لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک پڑھنے والے کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، مجدہ جان فضا ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 رحمتیں نازل ہوں گی اور 10 درجات بلند ہوں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سید یا رسول اللہ. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل. ہمارے پیارے نگران شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران عطاری دامت برکاتہم القدسیہ کا یہ پروگرام ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی ہوتے ہیں. ڈاکٹر سلمان ہمارے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ. روحانی علاج بتانے کے لیے قبلہ جنید مدنی بھائی ماشاءاللہ ساتھ ہوتے ہیں، آپ بھی ہیں. مسکراتا چہرہ اللہ ادحق اللہ حسنہ خنسا، مسکراتا رکھے اور مسکرانا چاہیے. کہ امیر سنو فرماتے ہیں کہ ہنسے تو اس کا گھر بسے، ٹھیک ہے جی، یہ ایک بات بھی بیان کی جاتی ہے بھارت. اور اگر کوئی ہنستا ہے، مسکرا رہا ہے، اگر کوئی مسکرا رہا ہے، کسی کے چہرے پر تبسم ہے، مسکراہٹ ہے، تو اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ ادحق اللہ سنت، اللہ تمہیں ہنستا اور مسکراتا رکھے. حکیم خلیل عطاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. پرابلمز، پریشانیاں زندگی میں آتی رہتی ہیں. اس پر پرابلم کے آنے پر انسان کا جو رویہ ہے یہ دو طرح کا عام طور پر ہوتا ہے. ایک تو یوں کہہ لیجئے کہ آدمی شخص جو ہے وہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے، جسے حواس باختہ ہونا، ہاتھ پاؤں جو ہے وہ پھول جانا، ایک تو یہ کیفیت ہوتی ہے. اور دوسرے کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں دوسری قسم کے، کہ جن کے ذہن میں اگلی بات پرابلم، پریشانی یا کوئی بھی اس طرح کا ایڈونچر جو ہے وہ آ گیا ہے زندگی کے اندر، تو اب دوسری بات جو ان کے ذہن میں کلک کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس سینیریو سے باہر کیسے آنا ہے، اس مشکل سے نجات کیسے پانی ہے، اس پرابلم سے آگے جو ہے وہ کیسے بڑھنا ہے، اور اپنی زندگی کو مثبت اور پوزیٹیو وے میں کس طریقے سے لے کر کے آگے بڑھنا ہے. تو جو فرسٹریٹڈ ہوتا ہے، حواس باختہ ہو جاتا ہے، جس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، وہ اپنی ہی نادانی کی وجہ سے شاید اپنا نقصان اور بھی کر لیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے بچوں پر اپنی رحمت کی اور اپنے کرم کی نظر فرمائے، اور ہمارے بچوں کو اللہ کریم، آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ کے بچوں کو بھی اللہ کریم عافیت، سلامتی اور راحت نصیب فرمائے. بچے کو چوٹ لگ گئی، گھر پہ ہیں، بچے کو چوٹ لگ گئی، بچے بعض اوقات اچھل کود کرتے ہیں، بچہ کہیں جو ہے وہ 4-5 فٹ جو ہے اسے چھلانگ لگائی بچے نے اور اس کو چوٹ آ گئی، سر پھٹ گیا، ٹھیک ہے، خون نکلنے لگ گیا، ایک بھی ہاتھ پاؤں پھولنے لگ جائے، سمجھ نہیں آئے کیا ہو گیا ہے، اور موبائل کہاں ہے، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، اس طرف کوئی جو ہے وہ اس پر بندے کے ہاتھ پاؤں پھول جائے، تو یہ اس میں نقصان ہو سکتا ہے کہ بچے کا بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو وہ یہ اور ہوتی رہے گی اور آگے نظام چلتا رہے گا اس کا، اگر اس کا سدے باب نہیں کریں گے، اس کو کیور نہیں کریں گے، اس کا علاج نہیں کریں گے، یا بر وقت بچے کو جو ہے وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دیں گے، تو یہ نقصان اس کا بڑھتا جائے گا. تو اگر دوسرا ایک رویہ یہ ہے کہ اگر بچے کو اللہ نہ کرے چوٹ لگ گئی ہے، سر پھٹ گیا ہے، تو بچے کو فوراً سے کسی قریبی میڈیکل کا جو کیمپس ہے یا یوں کہہ لیں کہ ہاسپٹل ہے، وہاں پر لے جائیں گے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بچے کی عافیت والا جو ہے وہ معاملہ یہ ہو جائے گا، یا چوٹ تو لگ گئی ہے لیکن کوئی آگے مزید بڑا نقصان نہیں ہوگا. اپنے حواس کو اور اپنی ذہنی صلاحیت کو کرائسس اور پرابلمز کے آنے پر مضبوط رکھنا اور اس کو پازیٹیو وے میں حل کرنے کی طرف جانا، یہ اللہ تبارک و تعالی جس کو عطا فرمائے اسی کو نصیب ہوتا ہے. نگران شورا سے انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہم پازیٹیو وے میں آگے بڑھ سکتے ہیں. پرابلم آئیں، پریشانی آئیں، ہمارے ہاتھ پاؤں نہ پھولے، ہم حواس باختہ نہ ہوں، فرسٹریشن کا شکار نہ ہوں، یہ کیسے ہوگا؟ اس پر نگران شورا سے ابتدائی طور پر مدنی پھول لیں گے. اور ڈاکٹر سلمان ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر کامران بھی ہیں، تفضل و تشرف آئیں، تشریف لائیں. میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ اگر جیسے بچہ ہے گھر میں، اس کو کوئی چوٹ لگ گئی، تو اب جو ہے وہ پہلا کام ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں، اس میں جو بچوں کے ساتھ جو ہوتا ہے نا چوٹ لگنے کا، گھر کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں، تو ڈیپینڈ کرتا ہے بچے کی عمر کتنی ہے، छः माह का, एक साल का, डेढ़ साल, दो साल या पाँच साल तक की उम्र है, तो चोट लग गई है और चोट की कैफियत क्या है? कभी कभी अमूमन होता है ऐसा ही है, जो हमारे पास आती है कॉल्स वगैरह इमरजेंसी, बच्चे कुछ चीज़ खा पी लेते हैं, जैसे मेडिसिन का एक बहुत मशहूर है कि दवाइयाँ घर में रखी हुई होती हैं तो बच्चे वो खोल के ओवरडोज ले लेते हैं, या दवाइयाँ जो रखी हुई होती हैं तो वो खा जाते हैं, इसकी पॉइजनिंग के ज़्यादा केस बन रहे होते हैं। एहतियातें जो है ना बच्चों के, जिनके घर में बच्चे हैं उनको इन चीज़ों की बड़ी एहतियात करनी होती है। दवाइयाँ जो हैं बच्चों की बिल्कुल ही पहुँच से दूर रखें, या ऐसी जगह पे रखी जाए जहाँ बच्चे बआसानी ना जाए, क्योंकि बच्चे हम उसूलन जो ना बड़ों को खाते हुए देख रहे होते हैं, वालिद वालदा या कोई घर का बुजुर्ग खा रहा है दवा, तो उनको लगता है ये हैबिचुअल चीज है, खाने की चीज है, तो वो कभी कभी खोल के ले जाते हैं, तो पॉइजनिंग के केस के अंडर आ जाता है ये। एक दूसरा, आग लगने के जो केस होते हैं, जैसे बच्चों को कभी कभी आग लग जाती है या तेल वगैरह गिर जाता है, गर्म तेल, फीमेल के साथ भी इस तरह के मामला होते
हैं।
आग लग जाए से मुराद कि बच्चा किसी आग के करीब चले गया तो उसको जल गया,
जल गया, ठीक है, बर्न हो गया, यानी
बर्न हो गया। तो अब इसके हवाले से ना आप फर्स्ट एड के से रिलेटेड आप घर के अंदर मेडिसिन ये होती हैं बाजार में मिलती, आपने किसी भी फैमिली डॉक्टर से लेके मशवरे के साथ ये फर्स्ट एड की मैनेजमेंट आप घर में रख लें। जैसे बर्न हो गया तो फौरी तौर पर कौन सा ट्यूब लगाना है, कितनी देर में लगा देना है, गिर गया या कुछ हो गया तो इसको कब हॉस्पिटल लेके जाना है, और गिरने की पोजीशन में, फ्रैक्चर की पोजीशन में, इंजरी की पोजीशन में किसी बच्चा हो या बड़ा हो उसको हैंडल करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
सही।
अब जैसे किसी एंगल पे वो गिरा है और उसका हाथ कहीं से फ्रैक्चर हुआ है, अगर फ्रैक्चर लोकेशन से आपने उसको पकड़ लिया या उसको मिसमैनेज कर दिया तो फ्रैक्चर और खराब हो सकता है।
ओहो।
तो ज्यादातर जो एक्सीडेंटल केस होते हैं रोड पे या बाहर इधर, तो होता ही है कि जो लोग ज्यादा मैनेज करने की कोशिश करते हैं, उठा लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे किसी का हाथ फ्रैक्चर है, अगर हाथ पकड़ के आपने उठा दिया तो क्या होगा, उसका फ्रैक्चर एग्रेवेट हो जाएगा।
सही।
तो
गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा।
तो हर चीज के लिए आपको या तो घर घर के अंदर ये सारी प्रोविजन रखें, जैसे कुछ जल गया या कोई बर्न हो गया उसका रखें, कोई चीज ज्यादा खा ली तो इन चीजों से रिलेटेड थोड़ी मालूमात रखनी होगी, और ये एहतियात है दवाइयों के हवाले से करनी होगी। हमारे पास जो अमूमन कॉल्स वगैरह आती हैं, पेशेंट हम इमरजेंसी में देखते हैं तो अमूमन इसी तरह के होते हैं।
ठीक है, ये जैसे आपने कहा फ्रैक्चर के बारे में, तो पहला इस पे पहला क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए कि अगर बच्चे की हड्डी टूट गई है तो क्या सबसे पहले काम क्या करें?
बच्चे की हड्डी टूट गई तो हमें तो पता ही नहीं ना हड्डी टूट गई है।
नहीं, बात का तो लग जाता है ना जी पता कि अब जैसे हाथ,
इसमें सलमान भाई जो आप बता रहे हैं वैसे जरा डिफिकल्ट होता है, एक आम आदमी को इन चीजों को समझना जरा मुश्किल काम होता है, लेकिन बात सूरतें ऐसी होती है कि नजर आ रहा होता है
जी, जी, जी,
हो गई है। उसमें आसान सा तरीका ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे आपकी इस एरिया की हड्डी टूटी है, यानी कि बाजू की हड्डी टूटी है निचले हिस्से की, तो जो जो जॉइंट होते हैं दोनों साइड के उनको स्टेबल करके, यानी कि उनको पकड़ के,
नहीं हर कोई इसको स्टेबल नहीं कर सकता,
नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि आप मूवमेंट जो है उनकी मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता यहाँ से हड्डी टूटी है तो आपने एक हाथ यहाँ से रखा और एक हाथ यहाँ से रखा, दोनों ज्वाइंट को स्टेबल करके इस पोजिशन में आपने उसको उठा लेना है।
अच्छा, ये लोग बांध देते निगरानी शुरा की आमद आए हो।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
बाजू का क्या करें डॉक्टर? घर पे दुपट्टा है जैसे, बाजू जैसे यहाँ से टूट गया, अब क्या किया? वो बांध दिया बच्चे को भाई। ये
नहीं, मेरी रिकमेंडेशन ये एज सून एज पॉसिबल आप हॉस्पिटल की तरफ लेके जाए।
ठीक, ये अच्छा मदनी
हॉस्पिटल में ले जाने के लिए इससे पहले मूवमेंट्स करनी होगी ना, उस मूवमेंट्स की प्रिकॉशन व्यक्ति के लिए बतानी है, हमने ट्रीटमेंट के लिए नहीं बताना।
सही।
कि वो जो आपने मूव करना है तो वो उसमें जो पेशेंट को जो तकलीफ है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उसको कितना मिनिमाइज कर सकते हैं, कितना कम से कम करते हैं, वो उसका तरीका यही होता है। अब जैसे आपने कपड़े का बात की, कपड़े से बेहतर ये है कि कोई वुडन लकड़ी की कोई चीज हो जिसको आप सपोर्ट दे के आप उससे उठा दें, तो उससे भी काफी हद तक उसकी तकलीफ में कमी आ सकती है।
सही।
तो उसकी जो पोजीशन को आप सेटल करके फिर आप मूव करेंगे हॉस्पिटल में तो बेहतर मैनेजमेंट होगी, ना कि उसके ऊपर आप कोई चीज बांध दें, और अगर टाई कर दें तो वो उसके लिए और नुकसानदेह साबित होता है कि बाजू का जो ब्लड सर्कुलेशन वगैरह है वो नॉट वगैरह या गिरा लगाने से और ज्यादा उसको डैमेज होने का सिलसिला होता है, या अगर गलत तरीके से इस्तेमाल उठा लें तो हड्डी ऐसी जगह से खुदा न खासा टूटी है जहाँ से आपकी रगे वगैरह मूव कर रही होती हैं तो वो भी डैमेज कर सकती हैं। तो इसमें बेहतर एहतियात करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, खुद से कुछ ना करें, जितना आप समझ सकते हैं उतना बर्दाश्त कर लें तो ज्यादा बेहतर।
ठीक है। अच्छा डॉक्टर, सर फट गया बच्चे का, अब लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे का खून निकल रहा है तो फौरन वो क्या करेंगे, उस जगह को दबा देंगे वो उठे से जैसे, ठीक
सर का केस डिफरेंट है।
अच्छा
तो सर अगर फट जाता ना मोमेंट तो उसको तो आप कंप्रेस कर देंगे जगह को, तो जो ब्लीडिंग हो रही होती है वो रुक जाती है।
ठीक।
उसमें अमूमन फ्रैक्चर एज इम्पोर्टेंट है, बच्चे की एज कितनी है, 5 साल है या इससे ऊपर है, तो वो अमूमन ये खून की नाली रप्चर होती है, जगह को आप कंप्रेस कर देंगे तो ब्लीडिंग रुक जाती है।
ये भी अच्छी बात होगी माशाल्लाह, हम सबके घर बार में आपकी तो सलामती अता फरमाए। निगरान शुरा हमारे साथ है माशाल्लाह, अल्लाह ना कबूल फरमाए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपसे जो हम इब्तदाई तौर पर गुफ्तगू करें, आप हमें ये इस पर हमें गाइड करें, हमें मोटिवेट करें, तरबियत करें कि प्रॉब्लम्स के आने पर फ्रस्ट्रेशन का शिकार होने की बजाय हम इस तरफ अपने जहन को कन्वर्ट और डाइवर्ट करें कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर कैसे आना है। क्या फरमाइए?
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। अल्लाह अल्लाह। असल में अचानक जब कोई सदमा या कोई ऐसा वाकया होता है ना, तो उस वक्त की सिचुएशन में और अगर आप मेंटली तौर पर प्रिपेयर हैं तो उसमें प्रॉब्लम आने की सूरत में फर्क रहता है। अचानक किसी की इंतकाल की खबर मिलती है कि इंतकाल हो गया, तो आप सख्ते में आ जाते हैं, और जब आपको बार बार एक का पता चलता है कि ये बस अब आखिरी पोजीशन है, फिर दोबारा रिलीज हो जाती है, फिर आखिरी पोजीशन है, फिर जब पता चलता है कि इंतकाल हो गया, तो उस इंतकाल की खबर में वो अचानक इंतकाल वाली खबर में फर्क है।
ठीक।
तो बहुत सारे ऐसे किताबों में लिखी हैं ये बातें कि नागुजीर हालात का सामना करने के लिए इंसान को हम वक्त तैयार रहना चाहिए।
सही।
कि कभी भी कोई भी सिचुएशन जो है वो चेंज हो सकती है, जिंदगी में आने वाले मुख्तलिफ मौसम की फोरकास्ट नहीं हो सकती।
ठीक।
फोरकास्ट बारिशों की हो जाती है, तूफान की हो जाती है,
सही।
सर्दी गर्मी की हो जाती है, धूप छांव की हो जाती है, बस जिंदगी में जो कुछ हो रहा होता है इंसान के मुकद्दर में जो होता है वो हो रहा होता है। तो अब है ये कि जब कोई इस तरह का वाकया पेश आ जाए, तो असल में है सारा मामला जो मैं गौर कर रहा था पेरेंट्स और टीचर्स की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमारा अब का इस वक्त का जवाब जो है वो बस एक जवाब है, उससे कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी या लोग मेंटली तौर पर तैयार हो जाएंगे, इसका इम्कान बहुत कम रह जाता है, क्योंकि ये शुरू से तरबियत चाहती है ये चीज, हालात और वाकियात का सामना करने के लिए शुरू से ये चीज तरबियत मांगती है। और तरबियत की दो मेन जगहें हैं, एक है तालीमी इदारा
जी,
एक है घर।
सही।
तालीमी इदारे में उस्ताद तरबियत करता है, घर में माँ बाप तरबियत करते हैं। अच्छा, अब इन दोनों के पास कम से कम इस टॉपिक का निसाब होना चाहिए, माँ बाप के पास और उस्ताद के पास।
सही।
कि आपने अपने स्टूडेंट्स को, अपनी औलाद को इन इन हालात में इस तरह फेस करने के लिए प्रिपरेशन देनी है। डॉक्टर कामरान साहब ने जैसा भी फरमाया, तो मैं अभी ये सोच रहा था कि लकड़ी लगा दो या फना लगा दो, आप उससे क्यास कर रहे थे दिमाग के ब्लड को,
नहीं मैं क्यास
उसको दबा देते हैं, तो इन्होंने कहा नहीं उसको दबाना ही बेहतर है, खून निकलता है, तो एक तरफ खून का भेजाना दुरुस्त था, एक तरफ खून का रुक जाना दुरुस्त है, तो हम नहीं जानते कि कहाँ भेजाना दुरुस्त है, कहाँ रुक जाना दुरुस्त है। अब ये के इसको आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड, जो आप कह रहे थे।
जी जी।
फर्स्ट एड अलग अलग होता है, जख्म लग गया तो फर्स्ट एड क्या है, गिर जाए तो फर्स्ट एड क्या, हर एक फर्स्ट एड की हमने यहाँ किया फर्स्ट एड डेमोन्स्ट्रेशन, आपको याद होगा इसी एरिया में किया था। तो अगर इस तरह की कोई फर्स्ट एड की रेसिपी तैयार हो जाए मुख्तलिफ चीजों की, अब जैसे जामियतुल मदीना है, मदरसतुल मदीना, मदरसतुल मदीना भी छोटे बच्चे हैं,
सही,
इसी तरह दारुल मदीना है 9-10 की, वहां क्लासेस मौजूद है, इसी तरह और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं, एटलीस्ट कम से कम आप मिडिल क्लास यानी कि 8 से ही अगर थोड़ी 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 अपने निसाब में, अपने तालीमी में अगर इस चीज को शामिल कर लें कि अगर कोई खुदा ना खास्ता खुद उस पर्सन को या उसके घर में किसी को कोई ऐसा हादसा या वाकया पेश आ जाए तो उसको क्या करना चाहिए। हमारे यहाँ हमको याद है स्कूलों में एनसीसी कराई जाती थी, हैं
जी जी,
वो एक्सरसाइज पता नहीं जो भी इसमें होता था, बस तैयार किया जाता था नौजवानों को स्कूल में। बाकायदा ये एक पीटी होती है, असेंबली होती है, इससे स्कूलों में बहुत कुछ होता है। तरह हम जब 19 करते थे तो साइंस से हमारा वो था, तो प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में ले जाते थे, तो जो फिजिक्स की अलग प्रैक्टिकल होती थी, केमिस्ट्री की अलग होती थी, बायोलॉजी की अलग होती थी, तो ये सब कुछ तो अब ये करवाया जाता था। एक पीरियड था, मुझे नहीं पता कि ओवरसीज, जैसे अभी डॉक्टर जीरक को देखकर याद आया, जब ओवरसीज कल्चर है ये वहां का कोई इंस्टीट्यूशन है, बाकायदा अगर इस चीज को कि सड़क पर कोई गिरता नजर आ जाए, घर में कोई गिरता नजर आ जाए, कहाँ पुलिस का वेट करना है, कहाँ एम्बुलेंस का वेट करना है, और इन हालात में जबकि लोग मोबाइल पर सिर्फ मूवी बनाने में मसरूफ हो जाते हैं हेल्प करने के बजाय, तो हेल्प आउट कैसे करनी है, अगर उठाना है तो कैसे उठाना है, कि पता चले कि गिरा तो एक हड्डी टूटी थी, उठाया तो उसने तीन और तोड़ दी, तो ये हुई है। इसी तरह डेथ हुई है, यानी कि बचाने वालों ने, बचाने वाले जो थे वो मौत का सबब बन गए। तो ये जो कुछ है, अगर ये हमारे निसाब का हिस्सा बन जाए, पहले उस्ताद, टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन और वालिदैन, अगर इन सब की इस उन्वान पर थोड़ी थोड़ी तरबियत हो जाए। मैं आपको इसकी एग्जांपल कोट करूं, अपने आलमी मदी मगर फैदान मदीना में, मदनी चैनल में, इसी तरह मुख्तलिफ हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर हमने कोशिश की थी कि अगर खुदा ना खास्ता फायर हो जाए, मैंने आग लग जाए तो कैसे निकलना है। इवन के आग बुझाने के जो आलात हमारे लगे हुए हैं, हमने इस पर भी कोशिश की ट्रेन करने की कि इसको कैसे आपने यूज करना है, कि इसको यूटिलाइज किया जा सके, तो ये इससे फायदा होता है। और इस तरह की चीजों से आप बर्बाद, जैसे घर में शॉर्ट सर्किट हो गया, अगर इस तरह का कोई छोटा सा फायर, आग बुझाने का जो सिलेंडर होता है लाल कलर का, आम आदमी समझ जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो वो अगर घर में किसी ऐसी जगह पर हो जो, जैसे दवाई बच्चों से दूर रखनी है, ये भी बच्चों से दूर रखनी है, और उसको बुझाने का पता हो, उसके एक्सपायरी डेट का पता हो, तो फौरन उसकी क्लिप निकाल कर एक स्प्रे करना है। मैंने देखा है कि बाकायदा आग लगी है, आग लग गई है वायरिंग के अंदर, शॉर्ट सर्किट हुआ है, प्रॉपरली शॉर्ट सर्किट हुआ है और बाकायदा आग लग रही है, और एक स्प्रे किया, ठक ठक बुझ गई। ये मेरी आंखों ने देखी है ये चीजें। तो ये अगर आम आदमी, आई डोंट नो कि आम आदमी को रिकमेंड किया जाए, मुझे तो नहीं लगता कि रिकमेंड करने में कोई प्रॉब्लम है, रिकमेंडेड चीज है,
करनी चाहिए,
ठीक है। तो अगर इस तरह की चीजें, अब ये कहने को मैं कह रहा हूं, अब मतलब कि कौन करे, क्या करे, कैसे करे, ये एक अलग बात है, लेकिन जैसे मैं हूं तो मेरे घर के साथ ये चीज रखी हुई है, पर्सनली बता रहा हूं, ठीक है। और मैं पसंद नहीं करता कि इस, ये इस तरह की मतलब के कमजोर चीजें का एक मामला हो। तो ये जो ट्रेनिंग है ना, जिसकी जरूरत पड़ती है, और लोगों को कभी भी जरूरत नहीं पड़े, नहीं पड़े जिंदगी भर ना पड़े, फौज हमारी सरहदों की हिफाजत कर रही है, 71 के बाद कोई बड़ा, इतना बहुत बड़ा वाकया नहीं हुआ, अल्लाह ताला हिफाजत करे, पाकिस्तान की भी हिफाजत करे, तमाम इस्लामी सरहदों के अल्लाह हिफाजत फरमाए, लेकिन हमारा डिफेंस का बजट वो होना चाहिए। अगर दिफा मजबूत है तो बहुत कुछ संभलता है, दिफा बहुत मजबूत होना है। अंदर का भी दिफाई निजाम कमजोर होता है तो प्रॉब्लम, कोरोना आया, जिनका दिफाई निजाम मजबूत था वो कोरोना से लड़ने में ज्यादा कामयाब हो गए, जिनका अंदर का दिफाई निजाम कमजोर था कोरोना ने उनको भी परेशान किया था ज्यादा। तो किसी भी मुल्क की रियासत का दिफाई निजाम जो है, डिफेंसिव सिस्टम जो है, डिफेंस सिस्टम जो है, वो जितना मजबूत होगा उसी कदर उसकी हिफाजत रहती है। अल्लाह ताला हमारी अफवाज की भी हिफाजत करे, और हमारे दीगर इसी तरह जो हिफाजती मामलात में जो लोग हैं, अल्लाह ताला उन तमाम आशिकान रसूल की हिफाजत फरमाए। बात तो बात चली तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, तो उसका होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है इतना अरसा जंग तो हुई नहीं है, जब भी अल्लाह ना करे होती है तो यही चीजें हमारी सामने होंगी ना, अल्लाह की मदद से यही चीज सामने आएंगी, بلکہ اس کے تو فضائل ہیں جو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان آنکھوں کے فضائل ہیں جو اس کے لیے جاگتی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ یہ چیزیں ہوں، گھر میں ہم ٹیوب رکھتے ہیں، آئنٹمنٹ رکھتے ہیں، ٹیبلٹس رکھتے ہیں، نہیں استعمال ہوتی، ایکسپائر ہو جاتی ہے، تو وہ ایکسپائر ہو جانے کے بعد بھی رکھیں گے تھوڑی، کیا ایکسپائر ہو جاتی ہے رکھنے کا کیا فائدہ؟ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس کا استعمال کا ایسا وقت ہی نہیں آیا کہ پوری ٹیوب ختم ہو جائے اور پتا چلے کہ دخم ہی صحیح نہیں ہوا. تو یہ شکر کے پہلو ہوتے ہیں. اسی طرح میں نے ایک عرض کی تھی، بہت موضوع پہ موضوع چلا ہے تو میں عرض کر دوں، وہ درخواست ہے میری، سب سے درخواست ہے میری، مہربانی کریں پلیز، ہر گھر میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، ایک میل ایک فیمیل، غسل میت کے لیے تیار رکھیں. یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا مگر واللہ عالم ہم کس چیز کا انتظار کرتے ہیں، یعنی ہمارے گھر میں ہمارے کسی بڑے کا انتقال ہو جائے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے وہ آتے ہیں تو یہ بھی لاتے ہیں، تو تخت بھی لاتے ہیں، تو وہ ڈرم بھی لاتے ہیں، یہ سب چیزیں، یہ سب ہیں چیزیں، ہونی چاہیے ضرورت، لیکن اگر یہ چیزیں نہیں بھی ہوں تو بھی غسل میت ہوتا ہے نا. غسل میت کا طریقہ الگ ہے اور اس کے لیے سہولت دینے کے سامان الگ ہیں کہ بھائی یہ چیزوں کے کفن کیسے ہوتا ہے، کفن کیسے بنتا ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس کے لیے کوئی درزی نہیں چاہیے. آپ اپنا کپڑا سی سکتے ہیں، آپ اپنا ٹوٹا ہوا بٹن سی سکتے ہیں، بٹن اگر نکل گیا ہے تو کفن تیار کیوں نہیں کر سکتے؟ تو کفن تیار کیسے ہوتا ہے اور میت کو غسل کیسے دیا جاتا ہے، مہربانی کریں پلیز، یہ میں والدین سے درخواست کر رہا ہوں کہ یہ ٹریننگ اپنے بچوں کو دیں، خود تو سیکھ لیں. لیکن یہ ٹریننگ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ اولاد کو موقع ملتا ہے ماں باپ کو غسل دینے کا، بیٹی ہو تو اپنی ماں کو غسل دے سکے، بیٹا ہو تو اپنے باپ کو غسل دے سکے. روتے روتے غسل دے گا یار، دعائیں کرتے کرتے غسل دے گا، مغفرت کی دعا کرتے کرتے غسل دے گا. آپ اس کے لیے کوئی مطلب کہ بہت زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں، میں نہیں کہتا کہ آپ اس کے لیے کوئی دور چلے جائیں. لوگ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے دنیا کے کونوں کونوں میں بھیج رہے ہوتے ہیں، اکیلے 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 بچیاں اکیلی جا رہی ہیں، لاکھوں غالباً بچیاں اپنے اپنے ممالک سے باہر دوسرے ملکوں میں گئی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی عزتوں کی حفاظت کرے. ڈر مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے، اکیلی بچیاں کہ تھوڑی بھی دور جاتی ہیں تو مجھے ڈر لگتا ہے. اپنے اپنی فیلنگ ہے، ٹھیک ہے، بچوں پر بھروسہ ہے، بچوں پر بھروسہ ہے، حالات پر بھروسہ نہیں ہے، اوباش پر بھروسہ نہیں ہے، درندوں پر بھروسہ نہیں ہے. درندوں پر بھروسہ کرنے والا تو خود کو درندوں کے حوالے کر رہا ہے. یہ درندہ صفت طبقات جو ہے نا، ان کو درندگی پر ابھارنے کے اسباب بھی پیدا کیے گئے نا، کیونکہ انسان کی جو گندی خواہشات ہوتی ہیں شہوت، اس کو تو ابھارنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں اور وہ مواقع چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جسٹ اپنے موبائل کے ذریعے، اپنے پی سی ٹیبلٹ کے ذریعے، اپنے لیپ ٹاپ کے ذریعے، اپنے کمپیوٹر کے ذریعے آپ نے آن لائن جا کر غسل کفن کا طریقہ سیکھ لینا ہے. گھر بیٹھے آپ کو غسل کفن کا طریقہ سکھایا جائے تب بھی ہم نہ سیکھیں. اور جو کورسز ہوتے ہیں وہ بھی کیا، ہمارے باقاعدہ ایک سیگمنٹ ہوتے ہیں، وہ ویڈیوز لے جاتے ہیں اور وہ سکھا دیتے ہیں. میری درخواست ہے تمام تر دنیا بھر کے عاشقان رسول سے، درخواست ہے مہربانی کریں، مہربانی کریں، کفن دفن مہربانی کر کے یہ طریقہ تو سیکھ لیں. اور اسلامی بھائیوں کو تو قبر میں اتارنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے، جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ بھی آنا چاہیے، نماز جنازہ پڑھنے کا بھی طریقہ آنا چاہیے. جو ہم کو آنا چاہیے وہ تو آنا چاہیے، دعائیں یاد آنی چاہیے کہ دعائیں کیا ہوتی ہیں میت کے لیے. مہربانی کریں، یہ مطلب یہ امپورٹنٹ چیز ہیں. آپ جس جاب کی پریپریشن کر رہے ہیں وہ جاب کنفرم نہیں ہے، موت کنفرم ہے.
Hey.
یاد رکھیے، شادی کنفرم نہیں ہے، جنازے کنفرم ہے. جس چیز کی تیاری، واقعی میں کہہ رہا ہوں کہ پرائیورٹی ختم ہو گئی ہماری زندگیوں سے، ہم بہت ہماری ترجیحات ختم ہو گئی. پھر ہم کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کا پرابلم ہے، برکت نہیں ہے، ترجیحات ہی درست نہیں ہے، ہماری پرائیورٹیز ہی درست نہیں ہے، ہماری مطلب کہ سوچ کی ڈائریکشن ہی پراپر نہیں ہے. تو یہ میری گزارشات تھی. آپ نے مجھ سے حل ارشاد فرمایا کہ یہ کیا، تو میں نے کہا کہ ابھی تو ہم ان کو ڈیمو دینے سے رہ گئے، یوں کر لیں یوں کر لیں یوں کر لیں.
लेकिन मैं यही चाहता हूँ मैं एक सिस्टम का मेरा माइंड ही सिस्टम का है। सच्ची बात यह है मैं मुझे निजाम और सिस्टम में दिलचस्पी ज्यादा होती है। जब आप निजाम और सिस्टम बना देते हैं ना और लोगों की उस निजाम और सिस्टम पर तरबियत कर देते हैं तो आपकी जिंदगी आसान हो जाती है, इदारे और रियासत के काम आसान हो जाते हैं, मईशतें आसान हो जाती हैं, घर का निजाम आसान हो जाता है। सिस्टम निजाम, तो निजाम और सिस्टम दें आप दुनिया से चले जाएंगे, मगर ये चीजें जो अपनी है ना वो चलती रहेंगी। इसलिए मैंने आपको अर्ज किया कि टीचर्स का, उस्ताद का और एडमिनिस्ट्रेशन का, इसी तरह वालिदैन का ये जो किरदार है और इस किरदार को कैसे पूरा करना, इसके लिए पूरा निसाब और कैरिकुलम, सिलेबस और बाकायदा इसकी राइटिंग और डिटेल होनी चाहिए। इंशाल्लाह मसाइल का हल निकल जाएगा
माशाल्लाह। यहाँ मैं नाज़रीन को अर्ज़ करता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दावत इस्लामी के आईटी डिपार्टमेंट ने एक जो है वो एप्लीकेशन जो है वो जारी की है जिसका नाम है मुस्लिम फ्यूनरल। मुस्लिम फ्यूनरल, ये इसको आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करेंगे तो सबसे पहले नंबर पर आपको इंशाल्लाह यही एप्लीकेशन जो है वो मिलेगी। तो ये अपने मोबाइल में भी जो है वो डाउनलोड कर ली जाए और जिस तरह निगरान शुरा ने फरमाया है उसे मैयत का तरीका ये भी हमें।
सलमान भाई आपको मैं बताऊं, एक जिसके घर में डेथ होती है ना, इंतकाल होता है, उसके घर के जो पर्सन है ना, जैसे बेटा है, बेटी है या क्लोज जो घर के जो अफराद है, अब इंतकाल हो गया, इंतकाल से पहले तो एक अपनी प्रेशर और एक अपना पेन होता है
जी।
जब इंतकाल हो गया ना तो इंतकाल हो जाने के बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन सबके सामने खड़ा है ना
जी,
वो ये है कि यार अब यार ये
दूसरे में
इसका अब कॉन्टेक्ट करते हैं, होना तो ये चाहिए कि मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना।
सही,
घर में भाई है, बेटा है, बाप है, अच्छा कजिन है कि तो फौरन पहुंच जाते ना रिश्तेदार, कजिन तो फौरन पहुंच जाते हैं कि चलो कोई इशू नहीं है। अब मतलब के क्या मैं अर्ज करूं, हम ही नियत कर लें सबसे पहले। मैंने तो अपने बच्चों को कहा हुआ, बच्चों बच्चियों को सबको कहा हुआ है सीख लो अल्हम्दुलिल्लाह, और हो सकता है कि इन्होंने सीखा हुआ होगा, हम बच्चियां तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने भी सीखा होगा अल्हम्दुलिल्लाह, जरूरी है। मैं अपने वालिद को गुसल देते हुए तब वहीं खड़ा था और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहीं था, और लेकिन खैर इस्लाम भाई आए हुए थे तो सब कुछ तो मुझे नहीं करना था, लेकिन पता है किसी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफी मैयतों को गुसल देते वक्त वहां होना, रहना, करना, इसका सआदत मिली हुई है। मौत को भूल गए यार, मौत को भूल गए, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। कफन दफन ये मतलब फर्ज किफाया वाली चीजें हैं, एक मुसलमान को नहीं आनी चाहिए यार। सलमान अतारी आपको मुझे नहीं आनी चाहिए यार,
आनी चाहिए
फिर यार, फर्ज किफाया वाली चीजें हैं यार। दुनिया हमारे दिमागों पर सिर्फ एक दुनिया की तालीम, दुनिया का प्रोफेशन, दुनिया की प्रोफेशन स्किल्स बढ़ाने की धूम सुबह रहे, बस पता नहीं हमारी कौम किस समत चली गई है। मैं नहीं कहता कि अगर वो जायज और हलाल तरीके से करते तो नहीं करना चाहिए, मैं इसका इनकार नहीं करता, मगर उस पर इतना इसरार भी तो ना किया जाए
जी।
जो मेन नेसेसरी चीजें हैं, मुझे ये आ जाए, वो आ जाओ, या ये चीजें नहीं आ रही जिनकी जरूरत है। आपको जरूरत है प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे तमाम तर फैमिली से दरखास्त है, जिसके घर में खानदान में मैयत होती है ना तो उसके दिमाग में मौत मैयत ही घूम रही होती है।
अल्लाह
प्लीज, दरखास्त है मेरी सबकी, जो इस वक्त सुन रहा है उसकी बारी आएगी मौत की।
अल्लाह
सीधी सी बात है, आप जितने मुझे देख और सुन रहे हैं ना, आप मुझ समेत हम सबकी बारी आने वाली है, सब जाएंगे आप और मैं, कोई भी नहीं रहेगा यहाँ पर। अल्लाह वाहिदु ला शरीक, वो हय्य है, वो कय्यूम है,
अल्लाह
वो बाकी रहने वाला है, वही जिंदा है, उसे मौत नहीं आनी,
ऐसी बात,
सब खत्म हो जाएगा। हत्ता के मौत के जो फरिश्ते हैं हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, उनको भी हुक्म हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएंगे, फिर अल्लाह ताला सबको दोबारा जिंदा फरमाएगा, वो कादिर मुतलक है। तो हम सब चले जाएंगे, सब ने जाना है, जितने मुझे देखो सुन रहे हैं, अभी आप जो देखो सुन रहे हैं, मैं आप सबको रिमाइंडर दे रहा हूं, याद दिहानी दे रहा हूं, मैं हूं या आप हैं, हम सब दुनिया से चले जाएंगे, हम सबकी बारी आने वाली है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, उसकी क्या तैयारी की है, हमारे घर में उसकी क्या तैयारी है। समझदार लोगों ने घर में कफन रखे हुए हैं, जमजम का पानी छिड़का हुआ कफन रखा है, बुजुर्गों के तबरुकात रखे हुए हैं, यार जब हम मरे तो हमारी कब्र में ये उतार देना, ताकि हमारी कब्र में इन बुजुर्गों की बरकतें शामिल हो जाएं। की हुई है हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम के आजा के नाखून रखे थे, नाखून मुबारक रखे थे, बाल मुबारक और नाखून मुबारक रखे थे सैयद अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। और इरशाद फरमाया था कि जब ये मेरे साथ रख देना और मुझे अरहमर राहिमीन के सिपुर्द कर देना। क्या हमारी ऐसी कोई प्रिपरेशन है, या सरकार के साहबी हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके वाली हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहबी हैं, और हर साहबी ये नबी जन्नती जन्नती, तो ये साहबी हैं और साहबी का अमल है। आका फरमाते हैं कि एक ही पैरवी कर लो हिदायत पा जाओगे। इसी तरह और भी साहबा सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक उम्दा वो लिबास जब आका को आका ने जब पहना तो उम्दा हो चुका, तो एक बड़ा वो दिया गया लिबास तोहफे में, आका ने उसे अपने बदन मुबारक से छूने की सादत अता फरमाई, तो एक साहबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने देख कर फरमा आका ये मुझे अता फरमा दे, तो सरकार में ना लाह ना हाजत अगर की, अंदर तशरीफ लेकर वो लिबास उन्हें अता फरमा दिया। बाद साहबा ने कहा कि तो पता था कि आका को इसकी हाजत थी, तो अर्ज की कि मैंने पहनने के लिए नहीं लिया, बस मैं जब दुनिया से जाऊं तो इसे मेरे कफन में इसको इस्तेमाल कर लेना, मतलब साथ दे देना कफन में, इसी तरह की चीजें हैं
जी।
तो ये चीजें थी कि इसको सरकार के बदन पाक से छूने की सादत नसीब हुई है, तो ये तबरुकात की बरकतें हैं
जी।
मेहरबानी कीजिए मौत की तैयारी के लिए, अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए, अल्लाह आपको भी तौफीक अता फरमाए,
आमीन।
और हम सबको अल्लाह ईमान की सलामती अता करे, इस तरह की चीजें अपने घर में रख लें, बुजुर्गों के और औलिया कराम के अच्छे अच्छे तबरुकात, इस तरह की चीजें रख लें कि और कि ये जब मैं जाऊं तो मेरी कब्र में उतार देना। शजरा शरीफ है, आहदनामा हमारे कब्र में रखा जाता था, है भी कईयों के आहदनामे कब्र में रखे, ये बस अल्लाह और उसके रसूल की रहमत पर नजर रखते हुए औलिया कराम बुजुर्गान दीन नेक अल्फाज नेक चीजें, ये अच्छा फाल है यार उसको करके जाओ तो हो जाता। दूल्हे के जेब में लींबू भी तो डाल देते, कभी किसी ने नहीं कहा कि लींबू पर भरोसा करते हो, तो टोटके करने में कोई मना नहीं करता, ये तो तबरुकात है, इसके असले मौजूद है
जी।
अल्लाह आपकी और हम सब के ईमान की हिफाजत करो। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
बात कंक्लूड होगी, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये इससे रिलेटेड ही एक बात है, उसको भी आप बयान फरमा दें कि इस तरह की जब गुफ्तगू की जाती है तो ये सुनने में आता है यार कोई खैर खैर की बातें करो, ये क्या बातें करनी शुरू कर दी हैं, कफन की बातें कर रहे हो भाई, क्या बातें कर रहे हैं आप, जिस तरह की लोग गुफ्तगू
कर रहे हैं। कफन की बातें कर रहा हूँ या कन्फर्म की बातें कर रहा हूँ, जो कन्फर्म है मैं उसकी बातें कर रहा हूँ, और ये बातें तो करनी चाहिए। लज्जतों को खत्म कर देने वाली मौत का कसरत से जिक्र क्या करो, यानी जो दिन में 20 बार मौत को याद करता है वो मरता है तो अल्लाह ताला उसे शहादत का रुतबा अता फरमाता है।
सुभान अल्लाह।
तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला अन्हु अमीर मोमिनीन है, और बा एहतिमाम मौत का जिक्र करने की महफिल सजा देते हैं और फिर रोते थे। ये अल्लाह के नेक बंदे गुजरे हैं, मतलब हम तो सच्ची बात है मौत को याद क्या करेंगे, हम तो भूल बैठे हैं। अल्लाह हमारे हाल पर, ये तो दिलों को नरम करती है, आंखों को तर करती है और जहन को ताजगी देती है। हकीकत यह है कि हकीकत की तरफ ले जाती है,
वाह,
हकीकत यह है कि ये बातें हमें हकीकत की तरफ ले जाती हैं, हमें यहां नहीं रहना। यानी मैं कई सोचता भी हूं और मैंने अर्ज भी किया हुआ, आप ये सोचिए कि जब हम माँ के पेट में थे ना, उस वक्त जैसे हमारी सांसें बहाल थी, रूह थी, और हम मतलब कि यूं समझे कि 8वां महीना 9वां महीना हमारी माँ के पे हम वहां मौजूद थे, जिंदा थे, और रिस्क भी हमें मिल रहा था, गोया के यूं समझे कि वो एक हमारी दुनिया थी, वो एक हमारी दुनिया थी माँ का पेट। जैसे ही हम दुनिया में आए, पैदाइश हुई और माँ के वजूद से निकल कर हम जब दुनिया में आते हैं तो देखते कि यार ये तो कुछ और ही है आलम, वो आलम कुछ और था जो माँ के पेट में थे। मगर जैसे ही हम यहां से उस तरफ आते हैं तो ये आलम कुछ और है। आप सोचिए कि जैसे ही मौत आएगी ना और जहां की तरफ हमारा सफर है ना, वो आलम कुछ और है। कितना बड़ा आलम है, आलम है बरजख, वहां की के हालात पर गौर करें, सोचिए जो किताबों में लिखी हुई चीज है, कोई मतलब ऐसा थोड़ी है कि पता नहीं है कुछ भी, वो एक आलम और है। वहां बंदा मरने के बाद तकलीफ में रहता है कि राहत में रहता है, इसकी तैयारी तो अभी करनी है ना। मैं गया हूं यूरोप के कई मुल्कों में, मैंने आपको यकीन दिलाता हूं मैंने इतना तकलीफ में देखा है लोगों को, इतनी तकलीफ में देखा है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। यहां क्या लोग तकलीफ में होते होंगे जो लोग वहां तकलीफ में, मगर जब उनसे बात करो तकलीफ के बारे कहते हैं यार यहां थोड़ी रहना है, ये वहां रह रहे हैं, वहां कमा रहे हैं, कहां के लिए, जहां इन्होंने जाना है, इनको पता है कि हमें वापस जाना है, हम 2 साल 10 साल जो भी इनकी प्लानिंग है, हम यहां इतने सालों के लिए। इन्होंने अपने आप को वहां नहीं बनाया, हत्ता के बाद वो हजारों हैं जिन्होंने आज तक अपना घर नहीं बनाया। दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं जिनमें 30-30 साल लोगों ने गुजार दिया, आज तक अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना सकते, अपनी मिल्कियत का एक मकान नहीं ले सकते, कानूनी नहीं है, मगर उन्होंने कमा कमा वो किसके लिए कर रहे हैं, यहां भेज रहे हैं, मदरलैंड की तरफ भेज रहे हैं, जहां वापस जाना है वहां भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं, हम क्यों नहीं भेज रहे, हमें जहां जाना है उनको भी वहीं जाना है जहां हमको जाना है, ये है हकीकत। मेहरबानी करें, इससे घबराने की बात नहीं है, ये तो हकीकत है। अल्लाह करे कि ये दिन में 2-4 दफा तो कम से कम, या चंद दफा तो कम से कम ये बातें हमारे कानों से गुजरती रहे।
आमीन आमीन आमीन। जी कॉल शामिल करते हैं।
मेरा ये सवाल है कि आफियत किसे कहते हैं, और दूसरी ये कि जवाल नेमत से बचने का क्या वजीफा है, जो हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह पाक हमें जवाल नेमत से बचाए, तो इस जवाल नेमत से बचने का क्या वजीफा
है? आफियत सलामती तकरीबन एक ही मायना में आती है कि सलामती अता हो, और जवाल ने जो अल्लाह ताला ने हमें नियमतें अता की हैं जाया ना हो जाए, नियमतें कम ना हो जाए, नेमत हमसे रुखसत ना हो जाए, इसकी भी दुआ है। और दूसरा बात का ये होता है कि इज्जत जिल्लत में तब्दील हो जाती है, तो ये भी जवाल नेमत है। और जब नेमतों के बाकी रहने, नेमतों में तरक्की की दुआ करें या तमन्ना करें, तो जाहिर उसमें ईमान सबसे बड़ी नेमत है
जी।
कि ना ये जाया हो ना इसमें कमी आए, बल्कि इससे बरकत आती चली जाए। वो एक बात हो रही थी कहीं सलमान भाई
जी,
तो मैंने कहा कि वो ना बादों का लोगों चीजें छीन लेते हैं, तो लोग चीजें छीनते भागते हैं ना, तो बाजों के तबीयतें इस कदर उस चीज में अटकी हुई होती हैं कि वो अपनी जान तक की परवाह नहीं करते और उसको बचाने के लिए जान भी दे देते हैं। अपनी जो जान अटकी हुई होनी चाहिए ना, सिर्फ ईमान की हिफाजत में अटकी हुई हो,
अल्लाह
ये जान जाए ईमान ना जाए,
आमीन।
इसके अलावा तो सदमे सदमे, अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए,
आमीन। जी
मैं अर्ज कर दूं, नेमतों को बाकी रखने के लिए हमारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कोई नेमत अता फरमाई फिर वो उसे बाकी रखना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसकी कसरत करें, कसरत से ला हौल शरीफ पढ़ें, तो कसरत के साथ इसका विर्द भी करते रहें। और इसकी तो और ज्यादा फजीलत है कि जो गमों में मुबतला हो, परेशानियों में मुबतला हो, तो इसके लिए भी ये बेहतरीन अमल है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम, जो कसरत के साथ पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उससे 99 बलाएं दूर फरमा देता है। تو یہ اپنے معمولات میں شامل رکھنا چاہیے، یہ وظیفہ کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور نعمتوں کو باقی رکھنے کے لیے بھی الحمدللہ عزوجل یہ وظیفہ آپ چاہیں تو کثرت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں.
ٹھیک، مرحبا. جی کال.
میرے بچوں کے ماموں میں ٹینشن بہت زیادہ رہتے ہیں، کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں تو فوراً وہ ٹینشن لیتے ہیں کہ کاروبار یہ ہو گئے نہیں، کہیں سے کوئی تھوڑا اونچا نیچا بندہ دیکھا فوراً ٹینشن لے لیے، ان کی دادو کرتا ہے یہ ہے وہ ہے، بہت سب سے زیادہ ٹینشن لی ہوئی ہے، گھر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی پہ اعتماد نہیں، ایسا کوئی حال فرمائے.
ڈاکٹر زیرک،
ٹینشن ظاہر ہے کہ یہ ایک، اگر میں کہوں تو اس کو ہم نفسیاتی بیماری تو نہیں کہتے، یہ تو ہم میں سے اکثر لوگوں کو کئی دفعہ ٹینشن ہو جاتا ہے، اور اکثر جب کوئی نئی سچویشن پیش آئے جس کو ڈی ایل کرنے کے لیے ہم اپنے طور پر سمجھیں کہ میں اس کو ڈی ایل نہیں کر سکتا، تو اس سے پھر ٹینشن ہوگی، اور ظاہر ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ بندہ وہ کام صحیح معنوں میں کر نہیں سکے گا. تو اس کی جو بہت ساری یوں تو چیزیں ہیں جو بندہ کر سکتا ہے، پلاننگ بہت زیادہ ضروری ہے، اپنے تجربات سے بھی بندہ سیکھتا رہے اور دوسروں کے تجربات سے بھی سیکھتا رہے، اور ذہنی طور پر مینٹلی طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط رکھے، توکل اللہ بھی رکھے، اور اپنے اندر سکلز میں اضافہ کرے، اپنے کانفیڈنس میں، اعتماد میں اضافہ کرے، اور یہ اس میں جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، اور اپنے جو مثبت اس کی کوالٹیز ہیں ان پر فوکس کریں بجائے اس کے کہ منفی کوالٹیز پر فوکس کرنے کے. تو یہ چند چیزیں ہیں انشاءاللہ بندہ جب کرے گا، اور اپنے جب ایسی ٹینشن ہو، گھبراہٹ ہو کہ میں کام ہو سکتا یہ نہ کر سکوں، یا یہ جو ایکسپیکٹیشن ہے پوری نہیں کر سکتا، تو اپنے پچھلے ایسے معاملات آئے ہوں گے جہاں آپ نے جو ہے ان معاملات کو ڈیل کیا ہوگا، تو ان کی طرف توجہ کر لیں کہ وہاں جب ایسے ہوا تھا تو بھی تو میں نے کر لیا تھا. تو یہ چند چیزیں ہیں کہ کرنے سے جو ہے وہ انشاءاللہ ٹینشن جو ہے وہ کم ہوگا اور اچھے طریقے سے کام ہوں گے، ورنہ یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس پہ بندہ کلام کرتا ہی چلا جائے.
اللہ رحمت کی نظر فرمائے، عافیت اور سلامتی والا جو ہے وہ معاملہ فرمائے. یہ جو ہے ٹینشن لیتے رہنا کہ پتہ نہیں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ بھی کام کرنے جا رہے ہیں اور ابھی سے یہ سوچ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی روتا ہوا جائے گا تو مرے کی ہی خبر لے کر کے آئے گا، کیا فرماتے ہیں
آپ؟ ڈاکٹر زیرک نے یہی کہا کہ پوزیٹیو سوچ رکھے
جی،
اللہ پر بھروسہ کرے، اور وہ کام اگر اس کو شریعت نے اسے کرنے کی اجازت دی ہے تو پھر اس کو کر لے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر، تجربے کار لوگوں سے مشورہ ضرور کر لے.
مدینہ مدینہ،
یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ کام سے پہلے، جیسے ابھی ڈاکٹر زیرک نے کہا کہ جو جن لوگوں کو تجربہ ہے تو جی، تجربے کار لوگوں سے مشورہ کرے، اپنے رب پر بھروسہ کرے، اور شرعی رہنمائی لے لے گا یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ ناجائز تو نہیں ہے.
ٹھیک،
تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شروع کرے، اللہ برکت دے گا، برکت تو رب کریم ہی عطا فرمائے.
ٹھیک جی کال.
انشاءاللہ آپ کا سلسلہ بڑا ہی بہترین ہے، اور آپ کا جو انداز دیکھا ہے امت کے لیے، آپ کی کڑن اور امت کو راہ راست پر لانا، اس کے تعلق سے آپ کے جو مدنی پھول ہوتے ہیں مدینہ مدینہ، عرض یہ میری نگران شورا کی بارگاہ میں کہ میرے بڑے ماموں ہیں، ان کی پیچھے کی جو اپنے بیک سائڈ کا معاملہ جو ہے، وہاں کی تین نسیں دب چکی ہیں، اس وجہ سے دونوں پیر سے اٹھے نہیں جا رہا ہے، تو وہ دعا فرما دیں کہ اللہ ان کو شفا دے دے، پھر سے وہ اپنے پیروں پر چلتے ہو جائیں. اور میں دونوں ڈاکٹر حضرات سے یہ عرض کروں گا کہ جو نس دب جاتی ہے اس کا بیسک کیا رہتا ہے، کس وجہ سے یہ نس دب جاتی ہے، جس کی وجہ سے معاملہ انسان کے اندر جو ترم برم ہو جاتا ہے، اس کے تعلق سے کچھ مدنی پھول عطا کرے. دوسرا یہ عرض ہے میرا ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں کہ کتنی عمر کے بچے کو شوگر ہو سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیرا.
اللہ تعالیٰ آپ کے ماموں کو صحت عطا کرے،
آمین،
اور انہیں چلتا پھرتا کرے، سنتوں بھری، نیکیوں بھری، راحتوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے.
آمین.
جی ڈاکٹر صاحب، ایسا اس میں انہوں نے تین نرف کمپریشن یعنی تین نس دبنے کا اسپائنل کارڈ کی طرف کا
جی بتایا. ابھی لوکیشن عموماً جو ہوتی ہے وہ نیچے کے جو مورے ہیں، تین مورے ان کے کمپریس ہو گئے، دب گئے ہیں، تو اس کے نیچے جو نرف دونوں سائڈ سے نکل رہی ہیں وہ دب چکی ہیں. इसकी अमूमी वजह जो होती है, एक तो वजन का ज्यादा हो जाना, दूसरा फिर जो लोग ज्यादा बाइक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनके अंदर ये नर्व कंप्रेशन की ज्यादा होते हैं, फिर सिडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, जैसे ज्यादातर बैठे रहने का काम करते रहते होते हैं, और पोस्चर आपका जो होता है खराब होता है। आजकल ये ज्यादा कॉमन हो गया कमर दर्द का मसला, तो इसमें ये नर्व अब चूंकि कंप्रेस हो चुकी है, अब इन्होंने कन्फर्म बता दिया MRI भी हो चुका है, तो इसकी सर्जिकल इंडिकेशन बनती है, इसका ऑपरेशन ही होता है, और ऑपरेशन से ये किसी हद तक ठीक हो सकता है। और दूसरा जो सवाल इन्होंने किया था, बच्चा किस उम्र में शुगर हो सकती है, शुगर आप किसी भी एज में से जुवेनाइल जो है बच्चों में यंग एज के अंदर भी शुगर आ सकती है।
आप में से हर वो शख्स जो अभी तक इस प्रॉब्लम से बचा हुआ है वो इस प्रॉब्लम में ना आए, इसके लिए चंद एक अर्ज मैं कर देता हूँ फिर इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, क्योंकि वह मेजोरिटी बची हुई अल्लाह बचा कर रखे। एक बात तो ये है कि अपने वेट को ना बढ़ने दें, नंबर वन। जाहिर है कि वो जब भी वेट बढ़ेगा तो आपके आजा पर वेट आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसको वो डिस्टर्ब करेगा, और जो वीक पॉइंट होगा उस पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू ये कि बहुत ज्यादा बैठने का मामला ना करें। एक तजर्बेकार लोगों का कहना यही है कि आप जैसे घंटा डेढ़ घंटा बैठे तो वो थोड़ी देर खड़े होकर चल लें, ये चार चार पांच पांच आप जो तीन तीन चार चार घंटे बैठे रहते हैं तो वो जब तो ये कंटिन्यू चुके बैठना होता है। ऑफिस में तो आठ आठ घंटे की जॉब होती है, मगर हर दो तीन घंटे दो एक डेढ़ दो घंटे के बाद बंदा उठे थोड़ा सा वॉक करे, या ऐसा काम रखे कि ये पेपर देना, वो हर एक को बुलाने के बजाय कुछ जाकर अगर पेपर देने की या इस तरह का काम करने की रखेगा तो काम भी होता रहेगा और थोड़ी इसकी इनकी मूवमेंट भी रहेगी, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि बैठने की जो अंदाज है ना, जैसे कि हम बाजू का आदमी अभी करके नहीं दिखा सकता न किसी और, मतलब ये कि लोग यूं आगे बैठेंगे और फिर पीछे टेक लगाएंगे तो ये जो पूरा हिस्सा है ना पीछे का, ये नीचे स्पेस खाली होता है, गैप होता है, और यूं घंटों बैठे रहेंगे आगे हो गए, जैसे ये आगे हो गए और अब ये पीछे हट गए और ये बहुत आगे चले जाते हैं। अब ये पूरा जो हिस्सा है ना पीछे का, इसके नीचे कोई बेस नहीं है और सिर्फ ये हिस्सा टेक लगा है और जहां बैठे हैं वो हिस्सा टेक लगा हुआ, बाकी सारा हिस्सा खाली है। ये पूरे पर ये यूं समझिए कि आपने इसको तरह भी यारो मददगार छोड़ दिया है, और ये कंटिन्यू इस तरह जो करते होते हैं इनके बैकबोन डिस्टर्ब हो जाती है और बहुत ज्यादा इनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसी तरह बैठने के अंदाज, चेयर वगैरह पर इसकी हाइट, बाजों की हाइट ऐसी अजीबोगरीब होती है, तो एक स्टैंडर्ड है चेयर्स के, सोफे के, जो भी सीट होती है उसके एक स्टैंडर्ड बने हुए हैं, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक ही ये इस तरह की चीजें आप करेंगे। और फिर ये कि थोड़ा बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज अपने हर में इस्लामी भाई दर देखने सुनने वाले को मेरी दरखास्त है कि अपनी रोजाना की रूटीन में हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर रखें। अगर वॉकिंग का मौका मिलता है तो बिल्कुल लाजमी वॉकिंग करें, यानी यूं तो कहा जाए कि अगर अपने आप को कम से कम आधा पौना घंटा तो अपने आप को दे दें, आपकी सेहत के लिए, आपकी जिस्म की को बेहतर रखने के लिए कम से कम रोज का आधा पौना घंटा आप के पास आपके लिए भी नहीं है। अच्छा है, सुस्ती है, कहते हैं ना ऑल सिंपल वर्क नॉट इजी, ये सिंपल काम होते हैं मगर इजी नहीं होते, तो वॉकिंग करना सिंपल काम है मगर इजी नहीं है। दुनिया के कई ऐसे काम है जो देखने को बहुत सिंपल है, सादा से काम है, हो नहीं रहे होते, हमसे हो ही नहीं रहे होते, या तो हमने उसको बहुत सिंपल ले लिया है यार हो जाएगा और हो नहीं रहा होता और जिंदगी का वर्षों गुजर जाते हैं। तो ये मेरी दरखास्त है, तो अपनी कमर का जरूर ख्याल रखें और ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस्म आपकी बैकबोन पर खड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब अगर इसमें कोई प्लस माइनस करना चाहें तो।
आपने काफी डिटेल में बता दिया है कि वेट जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हर लिहाज से,
ये जो इनका एक इशू था इसमें तो एक रीजन बनता ही बनता है, लेकिन दूसरी बीमारियों में भी बहुत ज्यादा मसाइल खड़े होते हैं, तो वेट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और इसमें आसान तरीका यही है कि अपनी डाइट को कंट्रोल में रखें और साथ साथ जो है जो वॉक के हवाले से आपने बात की उसमें भी करें। अब इसमें एक दो चीजें देखने में आती हैं कि
9-10 बजे के बाद ना खाने को लोगों ने बहुत प्रेफर किया है।
बिल्कुल,
एंडिंग टाइम जो आपका डिनर का है ना, वो 8-9 बजे तक का आपका डिनर टाइम होना चाहिए जो एक बताया जाता है, इसके बाद ना खाया जाए, ये बताने वाले बताते हैं। अगर जब हम में से हर एक क्या ये मामूल नहीं बन पा रहा, स्पेशली हम शहर वालों का
जी,
तो शहर में तो 10-11 बजे के बाद तो कई घरों में खाना खाया जाता है,
12-12 बजे तक,
और फिर उसके बाद सोना होता है। कोई काम में मुशक्कत तो है नहीं, मुशक्कत हमारी है नाश्ता सुबह में, और उसमें एक दो स्लाइस खा लेनी है और निकल जाना है। लंच में आधी मुशक्कत खत्म हो जाती है, थोड़ा डट के खाना है, और रात में मुशक्कत तकरीबन खत्म हो जाती है, दोनों टाइम से ज्यादा खाना है
जी।
तो ये हमारी रूटीन बड़ी डिस्टर्ब हो गई है, अल्लाह ताला खैर फरमाए।
ऐसे वहम का कोई इलाज है? मैसेज आया है, सुना है वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, आपकी इस बारे में क्या राय है?
अगर वहम बीमारी है तो उसका इलाज होगा,
ठीक है,
कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना उतारा गया हो।
वाह,
तो ये कह ही नहीं सकते कि वहम, अगर वहम बीमारी है
ठीक है
तो इसका इलाज लाजमी है,
सही,
होगा भी नहीं कहूंगा, लाजमी है, मिले ना मिले एक बात की बात है।
ये लोग कहते हैं हकीम लुकमान के पास भी इसका इलाज नहीं था,
लोग कहते हैं ना, तो आप क्यों कहते हैं?
ठीक है,
नहीं वहम बीमारी भी है, ओसीडी कहलाता है, डॉक्टर जीरक इसकी मजीद वजाहत कर देंगे।
तो डॉक्टर जीरक वजाहत कर दें।
इसमें ओसीडी भी है जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। बेसिकली ये जहन में जो है वो ख्यालात जो है वो ऑटोमेटिकली मनफी तौर पर आते रहते हैं, और इसके साथ साथ जो है ओसीडी जो है इसका तो बहुत अच्छे तरीके से इलाज मुमकिन है थेरेपी के जरिए, और बाज दफा अगर उसकी यानी मेंटल हेल्थ ज्यादा वर्स हो तो कभी कभी दवाई के साथ भी जरूरत पड़ती है। अच्छा, इसके अलावा एक वहम की बीमारी है जिसको हम जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, और उसकी अलामत ये होता है कि आप खाम खा में वरीज के बारे में वरीज करते हैं। एक होता है ना कि आपको किसी वाकई परेशानी का सामना है तो उसके बारे में तो फिक्र करना एक नॉर्मल चीज है, लेकिन अभी परेशानी आई नहीं, ये परेशानी हो सकती है, अब इसका क्या होगा, वो परेशानी हो सकती है, इसका क्या होगा, इसको हम जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, और इसकी ट्रीटमेंट ओसीडी से ज्यादा मुश्किल है और बहुत हद तक जो है वो यानी कि प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है ऐसे मरीजों की ट्रीटमेंट करने का। अब अगर इनकी रूट कॉज पे जाया जाए तो असल में काफी सारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं जो जीन्स के जरिए यानी मौरूसी तौर पर वालिदैन से औलाद में ट्रांसफर होती हैं कुछ हद तक, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा जो फैक्टर इम्पोर्टेंट है वो बचपन की परवरिश और घर के माहौल का, और बच्चों के सामने वालिदैन किस तरीके से जो है अपनी परेशानियों को फेस करते हैं। और अक्सर ये होता है कि जो एंग्जाइटी का शिकार होते हैं तो इनके या माँ में या वालिद साहब में जो है वो दोनों में से किसी में जो है वो ये मर्ज कहीं किसी न किसी हद तक पाया जाता है। तो वालिदैन के लिए ये जरूरी है कि अपने बच्चों के सामने अगर परेशानियां आते हैं तो उनको पहले देखें कि बच्चों के सामने उसको कैसे हमने लेकर चलना है। वालिदैन एक रोल मॉडल होते हैं, अगर ये शुरू से जो है इस हवाले से वालिदैन सीखें। देखें, मैं यहाँ पे फर्स्ट एड की शुरू में बात हुई थी, जिस्मानी तौर पर फर्स्ट एड तो हर कोई करवा रहा है, लेकिन पिछले चंद सालों से यूरोपियन कंट्रीज में मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड के नाम से बाकायदा तौर पर ऑर्गेनाइजेशन ने कोर्सेज करवाना शुरू किए। और ये किस वजह से कि भाई पता चला कि जिस्मानी तौर पर तो बंदा ठीक है लेकिन जहनी तौर पर वो क्योंकि डिफिकल्टीज से फेस नहीं कर पा रहा तो उसकी आउटपुट ही नहीं है, ना काम पर है, ना घर पर है, ना दीगर एज अ सोशल रोल के तौर पर है। तो मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड में बुनियादी तौर पर यही सिखाया जाता है कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कैसे डील करें, हवास आपके कैसे जो है वो मुश्किल टाइम पर कायम रहे, आप हवास बाख्ता ना हो। इसी तरह अगर किसी और में आप देखते हैं परेशानी या टेंशन या स्ट्रेस या डिप्रेशन या एंग्जाइटी वगैरह, उनको कैसे सपोर्ट किया जाए। तो निगरान शूरा ने अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े अच्छे तरीके से हमें मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड मौत की शक्ल में जो है वो हमें उसका एक जहन दिया, कॉन्सेप्ट दिया, जो कि हमारे दीन इस्लाम की तालीमात में मौजूद है। ये वाकईतन हमें जो है ना हकीकत की तरफ ले जाएंगे। और अगर मैं समझता हूँ कि जो वहम का शिकार है, जिसको जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर के परेशानियों के बारे में परेशानी करना, अगर वो वाकई मौत की फिक्र में लग जाए ना, तो मेरे ख्याल में ये एक दीन इस्लाम की खूबसूरती होगी तालीमात की, कि शायद उसका बहुत हद तक जो है वो ये हल निकल आए।
डॉक्टर जीरा, ये वहम जो है ना, शकूक और शुबहात और वहम, इस ऐसा लगता है कि शायद इसका कुछ ताल्लुक इंसान की अपनी जिंदगी के अंदाज पर भी मुनासिर है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने अपनी जिंदगी बड़ी ही बेहयाई और उल्टे सीधे कामों में गुजारी होती है, तो वो आगे जाकर अपनी फैमिली के ताल्लुक से भी वो शकूक और शुबहात में ही रहता है, और वो मतलब कि अपनी माँ बहनों पर, अपनी बीवी पर, अपनी बेटियों पर शक करता रहता है, शकूक में पड़ा रहता है, और ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये वो, तो लेट आने पर शक, तो वे फिर घर में लड़ाई झगड़े। उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि माजी में जो मेरा मेरे साथ जो जो चीजें सामने आई थी ना, शायद सारी दुनिया इसी, जैसे कहते हैं झूठे को हर आदमी झूठा नजर आता है और सच्चे आदमी को झूठा भी सच्चा नजर आता है। मुसलमान झूठ कैसे बोल सकता है, क्योंकि उसको उसको खुद को झूठ बोलना नहीं आता, तो हर एक को सच्चा समझ लेता है कि मोमिन अपनी सादगी की वजह से धोखा खाता है। तो ये जो है ना इंसान की जिंदगी का अंदाज, क्योंकि मैं चाहूंगा कि यहाँ पर हमारे एक जो लोग देख और सुन रहे हैं, अपनी जिंदगी के अंदाज को पॉजिटिव रखें, नेकी के साथ रखें, गंदगी, बुराई, गुनाह, बदकारी, गैर महरम औरतों के साथ वक्त गुजारना, जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, इस तरह की अगर आपने जिंदगी गुजारी है और माजी आपको इस तरह का गुजरा है, तो ये वो वाकियात है जो आपको आगे मुस्तकबिल में घर में चैन से नहीं रहने देंगे। ये गंदे ख्यालात बनकर, गंदे वसवसे बनकर, और मतलब के आपको, मतलब के आप उस तरह की गैरत खाएंगे अपने घर के महरम पर कि जो उन्हें दागदार कर देगी। यानी कि ये वो गैरत है जिसका मैं तस्करा कर रहा हूँ। इमाम गजाली अलैहि रहमान ने जो हदीस कोट की है, उस हदीस के मुताबिक ये वो गैरत है जिसे अल्लाह नापसंद फरमाता है कि जिससे तुम्हारी औरतों पर तोहमत लगे। ये मैं उन मर्दों को समझा रहा हूँ जो बिला वजह अपनी औरतों पर तोहमतें बांधते हैं, इन पर शक करते हैं, इनका जीना मुश्किल कर दिया है। ये लेट हो जाए तो इनके लिए 10 सवाल खड़े कर देते हैं, ये यहां चले जाए 10 सवाल खड़े कर देते हैं। बदकिस्मत लोग दूसरों की मां बहनों के मामले में कोई हया नहीं करते, अपनी मां बहनों के मामले में इनका है, तो दूसरों की मां बहनों के मामले में भी हया करनी है, अपनी मां बहनों के मुतालिक भी हया करनी है। लेकिन तुम खुद बेशर्मी और बेहयाई के मतलब के वो रिकॉर्ड कायम करते चले जाओ। तो ये जो ना, ये एक्शन का रिएक्शन है, ये एक गंदी और गलीज सोच और गलीज तबीयत का एक यूं से शाखसाना है जो इंसान की अपनी सोच और अकल पर ऐसा मुसलत होता है कि वो उसको जीने नहीं देता। वो उठ उठकर तहकीक कर रहा होता है, वो अपने घर वालों पर शक कर रहा होता है। हालांकि अगर आप शरीयत और दीन की बातें पढ़ें तो वाज़े तौर पर आपको उसूल मिलेगा कि जब घर जाओ तो इत्तला देकर जाओ, ताकि तुम वो ना देख लो जो तुम देखना नहीं पसंद करते। तो घर में इत्तला दे कर जाए, यहां चुप कर जाते हैं कि घर वाले क्या कर रहे हैं। ये वो चीजें जो घर को चलाएंगी। मेरी उन तमाम, ये मैं समझो कि शायद लाखों इस्लामी बहनों के मतलब के जज्बात को मैं बयान कर रहा हूं। किसी की मां परेशान है बेटे की शक की वजह से, किसी की बहन परेशान है भाइयों के शक की वजह से, किसी की बीवी परेशान है अपने शोहर के शकूक की वजह से, किसी का पूरे घर की तमाम औरतें परेशान है कि घर के मर्द जो है ना वो शक करते हैं। गैरत खाएं, इन्हें बेशर्मी और बेहयाई की तरफ ना जाने दें, अपने घर की महारीन पर गैरत खाएं,
انہیں بے شرمی اور بے حیائی اور بے غیرتی کے کاموں سے بچائیں, لیکن ان کی زندگیوں میں شکوک اور شبہات کا زہر تو نہ گولیں کہ ان کو قدم قدم پر ڈر لگتا رہے اور یہ کام کام کر جئیں. ان کو جینے تو دیں, ان کے اوپر آپ اپنے شکوک و شبہات کی اور اپنے جھوٹے وہم کی تلوار کو لٹکا کر رکھتے ہیں کہ اب تلوار گری کب تلوار گری. ڈر ڈر کے جیے گی ہمارے گھر کی عورتیں. انہیں شرم و حیا کے ساتھ رکھیں, پردے کے ساتھ رکھیں, غیر محراموں سے ان کو بھی بچنا ہے, آپ کو بھی تو بچنا ہے, ہم سب کو بچنا ہے. لیکن مہربانی کریں, وہم نہ پالیں, شک نہ پالیں, اعتماد کریں, اپنی اولاد پر اعتماد کریں. ان معنوں کر کے جھوٹی اور بیکار قسم کے وسوسے اور شکوک میں پڑھ کر اپنے مطلب کے بھائیوں پر تو بہنوں پر تو باپ پر تو ماں پر تو فلاں رشتہ دار پر, پھر کیا معاذ اللہ جھوٹی تہمتیں, تہمت ہوتی جھوٹی ہے,
ہاں جی,
بہتان, تہمت, بدگمانی اور اس طرح کی چیزوں میں جیتا ہے تو یہ تو آدمی خود ہی اپنے اوپر اس نے مطلب کہ مصیبت لادی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس مطلب بلا سے آپ کی میری حفاظت فرمائے اور ہمیں غیرت مند بنائے,
آمین,
مگر وہ غیرت ہو جو دوسروں کے لیے بے غیرتی کا تو سبب نہ بنے, وہ غیرت ہو جو دوسروں کے لیے بے شرمی کا اور اس کے لیے مطلب کہ گھٹ گھٹ کر جینے کا تو سبب نہ بنے. مہربانی کریں,
صحیح,
مہربانی کریں. میرے جتنے اسلامی بھائی ہیں, یہی بات جن اسلامی بہنوں کے لیے نا اس کو بھی میں سمجھا رہا جاتا ہوں, اپنے شوہر پر تو اپنے بیٹوں پر تو اس پر یہ وہم اور شکوک کے ساتھ جینے کے آپ کا گھر بھی ٹوٹے گا معاذ اللہ, اور گھر کے اندر بے چینی اور بے قراری اور ٹینشن اور پریشانی رہے گی.
ٹھیک,
اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سوچ کی اور زندگی کی اور عادتوں کی پاکیزگی نصیب فرمائے.
آمین 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 آمین. ایک سوال ہے کہ شوہر اور ساس کو اپنے بس پہ کرنے کے لیے اگر ان پر کوئی ٹونا وغیرہ جو ہے وہ کروایا جائے تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نقصان دینا مقصود نہیں ہے, بس اپنے جسے یوں بولے کہ بس میں کرنا مقصود ہے.
کیوں بس میں کرنا, کون سی بس؟ بس نمبر
ٹونا تو اپنے یو کے میں مچھلی کا نام ہے.
ٹونا فش,
ہاں میں جب ان کے یو کے جاتا ہوں کو ٹونا فش کھلاتے ہیں, وہاں تو کھانے پینے کے مسائل ہوتے تو فش پہ گزارا کرنے کی کوشش ہوتی ہے.
جادو ٹونا,
ہاں نہیں یہ تو ہے, منع نہیں کرتا, لیکن باقاعدہ ایک فش ہے جس کا نام ٹونا فش ہے.
چلے
چلے, تو کیوں کرنا ہے بس میں؟
بات مانے گا,
بات تو کرو نا, کیا ڈر کیوں رہے ہو؟
نہیں بات بس میں ہوگا تو بات مانے گا, جو کہیں گے وہ کرے گا, بدگلامی
آپ کا کردار اس کی بات منائے گا کہ عامل بات منوائے گا؟ باہر کا آدمی کیسے آپ کی بات منوائے گا؟ آپ اپنے کردار سے اس کے دل کو جیتیں,
صحیح,
کردار آپ اپنے ساتھ پیش کریں, وہ آپ کی بات مانے, کوئی عامل کیا کروائے گا؟ وہ پھر عامل کی بات مانے گا آگے جا کر, وہ جو کرے گا وہ کرے گا. تو یہ دلوں کو قابو کرنے والا, دلوں کو جیتنے والا, قدموں میں ادھر نہ ادھر, یہ اس چکر میں پڑنا نہیں چاہیے.
ٹھیک ہے, کال شامل کرتا ہوں.
احمد چراغ چشتی اتاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ مسائل کا حل سلسلہ بہت ہی زبردست چل رہا ہے, ماشاء اللہ ہم شوق سے دیکھتے ہیں گھر والے سب. چارج یہ کرنی ہے کہ نیند جلدی آ جائے, اس کا کوئی گھریلو علاج یا روحانی علاج بتا دیجیے گا.
نیند جلدی آ جائے,
یہ دونوں بیٹھے ہیں, جنید بھائی بھی جلدی سلا دیں گے اور یہ خلیل بھائی جلدی سلا دیں گے. میں تو جگاتا ہوں, میں سلاتا ہوں. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, اللہ آپ کو سکون کی نیند عطا فرمائے, اور ایسی نیند ہو جو دنیا اور آخرت میں کام آئے, بھلائی والی ہو, شر والی نیند نہ ہو جس سے بندی کی زندگی کے بہت سارے کام بھی برباد ہو جائیں اور نمازیں بھی ضائع ہو جائیں.
اچھا چلے ایک بات بتائیں, یہ کہتے ہیں کہ نیند تو پھانسی پر بھی آ جاتی ہے, اس کی کوئی حقیقت؟
محاورے محاورے تو محاورے ہوتے ہیں, محاورہ ہے, محاوروں کی حقیقت, کیونکہ محاوروں کے پیچھے کوئی بات سمجھنے کی ہوتی ہے. نیند تو پھانسی کے تک تو موت ہی آ جاتی جب پھانسی کر رہا ہے.
ٹھیک ہے
جی, خلیل بھائی یہ ڈاکٹر زیرک کا بھی ٹاپک ہے
جی,
یہی بولیں گے سوچوں کو خالی کریں اور مطلب یوں تھکنے کا یہ زیادہ میرا خیال ہے فارمولا دیں گے. نیند زیادہ تر تب آتی ہے جب انسان کا جسم اور ذہن
تھک جاتا
تھکتا ہے,
सही।
और जो एक बॉडी क्लॉक के साथ जब चल रहा होता है तो फिर शायद आ जाती है। जी,
इसके लिए इसके तो मुख्तलिफ असबाब होते हैं कि क्यों नहीं आती, वो एक अलग टॉपिक है। खाने पीने का भी इसमें दखल है, इसी तरह से आप जो सो रहे हैं वहाँ का माहौल क्या है, ये सारी बातें अलग हैं, तो उस पर भी आप गौर कर लें। अब बाकी रहा एक जनरली इलाज, में अर्ज कर देता हूँ, सफ़ेद तिल, सफ़ेद तिल, नंबर दो पिस्ता, नंबर तीन अखरोट, और नंबर चार बादाम, ये चारों चीज़ें आप हम वजन ले लें, मिसाल के तौर पे 100-100 ग्राम आप ले लें, ये सारी चीज़ें इनको पीस लीजिए, पीस कर इसको रख लें, और फिर रात को 2 चम्मच दूध के अंदर डालकर।
इतने तक का ये सारा नुस्खा है एक दिन का? गरीब आदमियों को तो सोच के नींद नहीं आएगी। बादाम, पिस्ता, दूध, अखरोट, ये लेने जाएगा बेचारे की नींद तो उड़ जाएगी। खलील भाई कोई सस्ता, गरीब गरीब कैसे जल्दी सोए ये बता दो, ये तो चलो अमीर सो जाएगा ये करके।
दोनों के लिए
नहीं, लेकिन ये फार्मूला नोट कर ले, मैंने ऐसे ही खुश तबई की है खलील भाई से, बहुत ज्यादा महंगा नहीं होगा, थोड़ा नॉर्मल आदमी कर लेगा। कितना दोबारा बताते हैं?
अखरोट, बादाम, पिस्ता और सफेद तिल, ये चारों चीजें 100-100 ग्राम या 50-50 ग्राम लेकर इसको पीस कर रखें।
बादाम भी कहते हैं, अखरोट, बादाम, पिस्ता और सफेद तिल।
जी, तो ये चार चीजें हो गई, चारों चीजों को एक जैसा वजन आप ले लें, 100-100 ग्राम, 50-50 ग्राम, जैसे भी आपने लेना है, इसको लेकर इसको बारीक पीस लिया जाए। और अगर आप इसको मीठा करना चाहते हैं तो इसके अंदर 50 या 100 ग्राम मिश्री भी शामिल कर लें, तो ये आप इसको किसी बॉक्स में, डब्बे वगैरह में, जार में इसको महफूज कर लें, और 2 चम्मच सोने से कुछ देर पहले, यानी कि बाद लोग बिल्कुल जब सो रहे होते हैं उस वक्त दूध वगैरह पीते हैं, तो दूध भी बाकायदा एक मुकम्मल गिज़ा है, तो इसको भी हजम करना ये भी एक मामला है, तो बिल्कुल सोते वक्त दूध पीना ये मुनासिब नहीं है, कुछ देर पहले पिया जाए ताकि कुछ वो उसको वक्त मिले और वो हजम भी हो जाए। तो सोने से कुछ देर पहले, आधा एक घंटा पहले, आप दूध के अंदर ये 2 चम्मच डालकर इसको पी लिया जाए इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। अगर दिमागी कमजोरी का सबब ऐसा है तो भी इंशाल्लाह,
टेस्टी फार्मूला है,
और टेस्ट भी है इसके अंदर, और इंशाल्लाह निगाह की कमजोरी है, बाज़ोकात सर में दर्द होता है दिमागी कमजोरी के सबब, तो इंशाल्लाह वो दिमागी कमजोरी भी दूर होगी, इससे हाफिजा भी मजबूत होता है। इसी तरह से अगर आपका लिखने पढ़ने का काम है, बयान करने का काम है, तो इंशाल्लाह उसमें भी फायदा होगा। और अगर पेशाब बार बार आता है तो ये सफेद तिल जो तिल होते हैं ये उस मामले में भी जो है फायदेमंद होते हैं, और ये पिस्ता जो है ये गुर्दों के लिए भी मुफीद है, यानी बहुत अच्छा सा और लजीज ये इलाज है, इसको कर लिया जाए। अगर आप ज्यादा कुछ इतना खर्चा नहीं,
अट्रैक्टिव भी है, इफेक्टिव भी है, टेस्टी भी है
जी,
और महंगा भी, इतना महंगा नहीं है,
इतना महंगा नहीं,
इतना महंगा नहीं है
कि आमतौर से लोग जो है ना कुछ इससे
डॉक्टर की, अच्छे डॉक्टर की फीस से कम ही होगा, बड़े डॉक्टर की फीस से कम ही होगा फार्मूला,
इससे ज्यादा जो है लोग वैसे ही और चीजों में उड़ा रहे होते हैं, जैसे एक जिंगर मंगा लिया हफ्ते में अगर, तो ये उससे सस्ता ही पड़ जाएगा।
हाँ, ठीक है, अब तो खलील भाई को समझना, जिंगर महंगा आता है।
इसी तरह से आप अगर इतना ज्यादा आपको ये चीज मुयसर नहीं है तो फिर आप सिर्फ ये कर लें कि बादाम का तेल ले लें, ऑयल ले लें, बादाम का ऑयल ले लें, इसका जो है सर के अंदर मसाज किया जाए, तो इंशाल्लाह ये भी बहुत ज्यादा मुफीद है। आप मसाज नहीं करना चाहते हैं, इसको दूध में डालकर पी लिया जाए, तो इंशाल्लाह ये भी इसके अंदर मुफीद रहेगा, इंशाल्लाह फायदा होगा। सब्जी और फ्रूट खाने पर ज्यादा तवज्जो दें, बिलखुसूस खास तौर से कद्दू शरीफ की जो सब्जी है इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये भी आपकी नींद के हवाले से इंशाल्लाह अज़्ज़ावजल मुआविन होगी।
अच्छा, सस्ते खाने से मुझे याद आया कि अगर आपको 50 रुपए की डबल बीफ बिरयानी प्लेट मिले खाने को तो आप खाएंगे?
ना,
नहीं खाएंगे,
क्योंकि 50 रुपए की डबल बीफ बिरयानी 50 रुपए में मिलनी नहीं चाहिए, क्वालिटी कैसे होगी वो बीफ बिरयानी 50 रुपए की
और डबल
डबल कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये मियार के ऊपर कम्प्रोमाइज, खाने पीने में मियार पर कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए।
सब इसको मजीद बेहतर करना हो तो इसमें एक चीज और अर्ज कर देता हूँ, कद्दू शरीफ के बीज।
मैं सौंफ याद कर रहा
हूँ, शुरू के जमाने अकदर से निकला सौंफ, तो ये भी बड़ी प्यारी चीज है, नींद के हवाले से भी, नजर के हवाले से भी, जिन लोगों की नजरें जैसे चश्मा और जैसे लगाने का मामला बन जाता है, तो वो अगर ये सौंफ और ये अगर इस्तेमाल करें, सौंफ भी इसके अंदर इतना ही डाल लें, और साथ में
जो दूसरी मैंने चीज अर्ज,
आप छुट्टे पर है मौलाना
जी,
क्योंकि कौम हम इतने सुस्त लोग हैं, मतलब हम एक तरह से ना लेजी तबीयत वाले लोग हैं। अब आप बोलो कि ये सब चीजें लाओ, फिर इसे बनाओ और इसे मिलाओ, फिर खाओ, फिर सो जाओ इतना ये हम लोग वो या मेडिकल स्टोर पे जाते हैं यार ये गोली देना, ठा करके पानी पिया, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, दूसरी गोली दो, डॉक्टर साहब दो बढ़ा दो, दो बढ़ा दो। मैं हकीम हजरात को पहले भी एक मशवरा दे चुका हूँ कि अगर मुझे मुझे अंदाजा शायद कॉस्टिंग का या आपके तरीके कार का प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन जैसे मिसाल के तौर आपने ये चीजें दी, आपने चार चीजें पांच चीजें जो भी बयान की, इन चार पांच चीजों को कैप्सूल में खुराक बनाकर या टेबलेट उसकी बनाकर, मिसाल देता हूँ टेबलेट तो बनी जाती है, टेबलेट बनाने में क्या मतलब है, रॉकेट साइंस तो है नहीं, टेबलेट तो बनी जाती है, तो वो बनाकर आया बोला भाई ये टेबलेट ले लो, अब उस टेबलेट को पता है कि जितनी चीजें दे दी ना ये है, चलो चार टेबलेट ले लो एक साथ, उसमें ये सारे अज्जा शामिल हैं, और ये इसका कोई मिसाल का तो नाम रख दिया, ये टेबलेट खा लें, मतलब हकीमी हकीमी फॉर्म मतलब के वो हकीमी फार्मेसी, हिकमत की फार्मेसी फॉर एग्जाम्पल। अब ये हकीम हजरात तो ये ना हम लोग सच्ची बात बता रहा हूँ, आप बोल रहे जिंगर घर में बना के खा लो, नहीं खाते, बाहर निकाल लेंगे, घर में हमसे घर में मयारी खाना बनता है मगर हमसे बनता नहीं है, इसलिए मैं तो मैं क्योंकि मैं खुद हकीम साहब की दवाओं को प्रीफर करता हूँ मैं एलोपैथिक के बजाय, तो लेकिन हर एक को फैसिलिटीज अवेलेबल हो ये जरूरी नहीं होता।
सब इसमें ऐसा ही है जिस तरह आपने इरशाद फरमाया, इस तरह की चीजें मौजूद है, मगर ये क्या वो चूंकि हम बहुत सारी चीजों के नाम यहाँ नहीं लेते
मुझे बराबर
जी, इसलिए उनके नाम
मतलब ये चीजें तैयार भी मिल जाती
हैं,
मगर मियार में कंप्रोमाइज नहीं कीजिएगा, ये
फार्मूले किसी अच्छी कंपनी का आप लें और इसी फार्मूले के एतबार से आपको चीजें मिल जाएंगी।
हाँ ये बता जी मौलाना,
नींद ना आने का रूहानी इलाज, नींद अगर किसी को नहीं आती तो रात को सोने से पहले अवलन बावजू सोने की आदत बनाएं, अच्छी अच्छी नियतों के साथ सुन्नत के मुताबिक सीधी करवट भी आप सोएं। कुरान पाक के तीसवें पारे में है सूरतुन नबा, पहली सूरत है तीसवें पारे की, सूरतुन नबा की ये आयत मुबारका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलना नौमकुम सुबाता, ये आयत मुबारका आप पढ़ते रहा करें इंशाअल्लाह सवजल नींद आ जाएगी, एक ये रूहानी इलाज। दूसरा रूहानी इलाज ये है कि रात को सोने से पहले आप ला इलाहा इल्लल्लाह, जब आप सोने के लिए लेटें तो ला इलाहा इल्लल्लाह ये कसरत के साथ ये पढ़ते रहें इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल नींद आ जाएगी। यहाँ एक बात मैं अर्ज करता चलूँ मदनी चैनल के नाजरीन कि जब आप सोने के लिए लेटें और सोने से पहले के औरादो वज़ाइफ़ पढ़ें ना, तो इसमें देखें अदब का तकाजा ये है कि पाँव समेट लिए जाएँ, और बेहतर तरीका यह है कि सोने से पहले के जो औराद हैं, दुआएं हैं, वज़ाइफ़ हैं, पहले वो पढ़ लें बैठ कर, फिर उसके बाद सुन्नत के मुताबिक सीधी करवट आप लेट कर सो जाएं। अच्छा, और अगर लेटे लेटे पढ़ना है तो अदब का तकाजा यह है कि पांव समेट लिए जाएं और फिर आप ये दुआएं पढ़ें, ये औराद वज़ाइफ़ पढ़ें, इंशाअल्लाह सबजल नींद आ जाएगी। और तीसरा भी आसान सा रूहानी इलाज है, वो भी आप नोट कर लें, कुरान पाक की ये आयत मुबारका إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما, ये आयत पढ़ें आप, अब इसके बाद दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें, पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह सबजल नींद आ जाएगी। तीन रूहानी इलाज आपके सामने बयान किए, तीनों में से जो एक आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ पढ़ सकते हो अमल कर सकते हो तो उस पर अमल कर लीजिएगा, अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फायदा हासिल होगा।
अमीले सुन्नत का एक अंदाज ये है कि लेटने से पहले क़िबला रूह बैठते हैं, क़िबले की तरफ चेहरा करके बैठते हैं, बिस्तर पर ही क़िबले की तरफ चेहरा करके बैठते हैं, और जो कई औरादो वज़ाइफ बैठे बैठे ही क़िबले की तरफ चेहरा करके पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आप चादर लेकर सीधे लेटते हैं, और सीधा लेटने के बाद आप अपने पाँव को समेट लेते हैं, और समेट कर फिर जो लेटने के बाद के कुछ औरादो वज़ाइफ होते हैं आखिरी कलाम के यही हो, जैसे सूरह काफिरून वगैरह पढ़ना होता है तो वो पढ़ते हैं, اور پھر آپ جیسے کہ یہ آپ کا ایک سمجھے معمول ہے، روٹین ہے جو امیر سنت کرتے ہیں.
اور اس کا ایک تعویذ بھی ہے جو ارادی اتاریہ کے بستے سے ملتا ہے، جسے نیند نہیں آتی، رات بھر جاگتے رہتے ہیں، تو اس کا ایک تعویذ تکیے میں رکھنے کے لیے دیا جاتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ چاہیں تو ارادی اتاریہ کے بستے سے بھی وہ تعویذ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، اوراد و وظائف مدینہ مدینہ، کیونکہ اس کے تو فائدے ہی ہیں. اچھی نیت سے پڑھے گا تو انشاءاللہ نامہ اعمال میں بہتری ہی آنی ہے، اچھے ہی ہونے. مگر میں یہی مشورہ دوں گا ناظرین کو اور حاضرین ہم سب کو کہ دواؤں کی طرف جانے کے بجائے اسباب کو دور کرنے کی کوشش کریں. یہ میری درخواست ہے آپ سب سے.
ٹھیک ہے جی، کال.
میرا نگرانی شورا سے عرض ہے کہ میرا پڑھائی کو دل نہیں چاہتا، برائے مہربانی مجھے کو اس کا حل بتا دیں تاکہ میں صحیح طریقے سے اچھی پڑھائی کر سکوں.
اہمیت کو سمجھیے، اگر وہ پڑھنا جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس کی شریعت نے اجازت دی ہے تو باقاعدہ اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس میں جو دلچسپ ٹاپکس ہوں اس کو پہلے لیں اور اس میں انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو آپ کے والدین اور ٹیچرز کی مدد کی ضرورت ہوگی کہ وہ آپ کے اس، کیونکہ ہر سبجیکٹ میں انٹرسٹ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، بعض سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہوتا ہے. تو اس طرح انشاءاللہ امید ہے کہ بہتری آ سکتی ہے.
چلیں آگے کال شامل کرتے ہیں.
اگر سبق جلدی یاد نہ ہوتا ہو تو کیا کرنا چاہیے کہ وظیفہ ارشاد فرما دیجئے.
کسی بھی کتاب کے پڑھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک. تو یہ دعا پڑھ لیں آکے یا ذل جلال والاکرام، یہ بھی ہم نے پڑھنے کی عادت رکھی تھی. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذل جلال والاکرام. یہ عموماً ہمارے تقریباً جو مقتدی المدینہ کی کتابیں اس کے شروع میں یہ دعا لکھی بھی ہوتی ہے، یہ پڑھنے کے بعد مطالعہ کریں انشاءاللہ یاد رہے گا.
ٹھیک ہے. بچے مٹی کھاتے ہیں، کیا کریں؟
نہ کھانے دیں
بس،
اور کیا کروں گا. مٹی کھا رہے، نہ کھانے دیں ان کو، کچھ کھانے کھانا کھلائیں. اور مٹی کھانے کی عادت ہے تو ان کو اسی جگہ نہ بیٹھا جائے، مٹی اور صاف ستھری جگہ پر بیٹھا، مٹی نہیں ملے گی اسے کہاں سے کھائے گا.
ٹھیک ہے جی، کال.
عثمان امان اتاری، گلزار طیبہ سرگودہ سے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض تھی حضور، میرے کزن کو مرگی کے دورے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کی امی بھی بہت پریشان رہتی ہے، اس کا کوئی مستقل حل اگر کوئی ہو بیان فرما دیں.
اللہ شفا عطا فرمائے، بیماری سے نجات دے ان کی امی کو، اللہ تعالیٰ سکون عطا کرے، بیٹی سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرے اولاد سے. آپ بھی کچھ علاج بتائیں، خلیل بھائی علاج بتائیں.
مرغی کا روحانی علاج یہ ہے کہ 30ویں پارے میں ہے سورۃ الشمس، تو آپ کے گھر والے سورۃ الشمس پڑھ کر، یہ بھائی کے آپ کے بھائی ہیں، بھائی بتایا آپ نے نا، دونوں کانوں میں دم کر دیں اور سورۃ الشمس کی وہی تلاوت کرے، وہی پڑھ کر دم کرے کہ جس کے تلفظ درست ہوں، کیونکہ تلاوت قرآن میں، اوراد و وظائف میں قواعد و مخارج کی درستی کا ہونا یہ ضروری ہے. ایک تو سورۃ الشمس پڑھ کر یہ دم کرنا ہے، دوسرا سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ آخری سورت تک، یہ آخری آیات سورۃ المؤمنون کی پڑھ کر یہ بھی آپ کان میں دم کر دیں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عزوجل شفا حاصل ہوگی. اور ایک مدنی مشورہ بھی آپ کو، آپ اوراد اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر لیں، اس کا ایک تعویذ بھی دیا جاتا ہے، وہ تعویذ آپ بھائی کے گلے میں ڈال دیجئے گا، اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ عزوجل مرغی کے دورے یہ پڑھنا بند ہو جائیں گے انشاءاللہ.
سب اس کے لیے اسے باقاعدہ علاج ہی ہوتا ہے پراپر، ہر کسی کے اپنے اپنے الگ الگ معاملات ہوتے ہیں، دیگر لوازمات بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ، کسی کے ساتھ کچھ پرابلم ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کچھ. تو اس کا یہ ہے کہ اس کے لیے بہتر عرض یہی ہے، مشورہ یہی ہے کہ کسی اچھے طبیب سے، ڈاکٹر سے مل کر اس کا پراپر علاج کروائے، یہ ان کے لیے.
جی،
اللہ پاک نگران شورا کو نظر بد سے بچائے. ہائی صاحب، اکثر نزلہ رہتا ہے، چھینکیں آتی ہیں، اس کا کوئی روحانی علاج اور ڈاکٹر صاحب کا کوئی نسخہ بھی عطا فرما دیجئے.
اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. روحانی علاج بھی بتاتے ہیں، انشاءاللہ میڈیکلی طور پر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی مدد کی جائے. میری دو تین مشورے ہیں اس میں آپ کو کہ پہلے غذا پر غور کر لیا جائے، ان غذاؤں کو چھوڑ دیں جس سے نزلہ ہونے کے اندیشے رہتے ہیں. میں ایک پیشنٹ کو جانتا ہوں جنہیں نزلے کا پرابلم ہے، ان کا اپنا کہنا یہ ہے کہ جب میں اے سی میں سوتا ہوں تو مجھے نزلہ ہو جاتا ہے، جب میں اے سی میں نہیں سوتا تو مجھے نزلہ نہیں ہوتا. تو بعض اوقات بعض چیزوں سے ری ایکشن ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی دیکھ لیے کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ماحول یا اس طرح کا انوائرمنٹ بدلنے سے بھی ہو سکتا ہے کہ طبیعت کو اس طرح کا مثبت اثر پڑتا ہو اور نزلے سے بچ جاتے ہوں. اب پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کچھ فرمائیں.
یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے نزلے کی نا کچھ لوگوں کے اندر، بچپن سے ہی ہوتی ہے یا فیملی ہسٹری کے اندر ہوتی ہے، کوئی کھٹا کھا لیتے ہیں، کوئی جوس وغیرہ پی لیتے ہیں، اس کے بعد یہ جلدی گلا خراب ہو جاتا ہے، بلغم آ جاتا ہے. مین اس کی وہی ہے جیسے ابھی آپ نے ترغیب فرمائی کہ احتیاط ہے، کچھ چیزیں سوٹ جو نہیں کرتی ہیں وہ چیزیں زندگی میں سے کم کرنی ہوں گی، جیسے اے سی ہے، کھٹی چیزیں، ان سے احتیاط کرنا،
نوٹس کرنا ہوگا
آہستہ آہستہ
کہ ایک دو چیزیں چھوڑ کر یا انوائرمنٹ بدل کر دیکھیں فرق پڑا تو پھر اس کا مطلب آپ کے لیے اس کو پکڑنا آسان ہے. نہیں سے فرق پڑا دوسری چیزوں کی طرف جائیں تیسری چیز، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں آسانی اللہ نے چاہا تو آ جائے گی، اللہ آپ کو تندرستی دے. جی
نزلہ اگر کسی کو رہتا ہو، زکام کی شکایت ہو یا گلا خراب رہتا ہو، تو ان امراض میں یہ وظیفہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ یہ تین مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، پڑھ کر آپ پانی پہ دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ نے پینا ہے. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عزوجل آپ کا نزلہ، زکام، کھانسی، پینے کے لیے امراض اگر ہوئے نا تو وہ بھی انشاءاللہ عزوجل ختم ہو جائیں گے.
کئی اوراد و وظائف آپ کو بیان کیے جاتے ہیں اور یاد بھی رکھیں، پڑھنے کی عادت بھی بنائیں، مقتۃ المدینہ کی کتابیں بھی اس میں موجود ہیں اور قرآن کریم کی ایک سورت ہے، سورہ شفا اس کو کہتے ہیں،
واہ،
سورہ فاتحہ.
سبحان اللہ،
ہمارے یہاں کہہ سکتے ہیں کہ بچے بچے کو یاد ہو جاتی ہے، اس کو صحیح یاد کر لیں اور پکے اعتقاد کے ساتھ اسے اپنے اوراد و وظائف میں شامل کر لیں. مطلب شفا کے لیے سورہ شفا بہترین سورت ہے، اگر صحیح پڑھ کے اس کو دم کرنے کی عادت بنائی جائے. سورہ شفا، پانی پر دم کریں، مریض پر دم کریں، خود پر دم کریں، سورہ فاتحہ پڑھ کر یقین کامل کے ساتھ، کیونکہ اس سورت کے جو نام ہیں ان میں ایک نام اس کا سورہ شفا ہے، اس کی بڑی برکت ہے. آپ کچھ فرمائیں گے؟
جی اس کے لیے جیسا کہ نگران شورا نے ارشاد فرمایا کہ غذا پر بھی غور کر لیا جائے، تو ایسے لوگوں کو بالخصوص چاول جو ہے اس مرض کو بڑھا دیتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس حوالے سے تھوڑا احتیاط کریں. اور بعد پنکھے کے نیچے بالکل جیسے رات بھر سوتے ہیں تو پنکھے کی ہوا کا جو فوکس ہوتا ہے وہ بالکل ناک کی طرف ہوتا ہے، تو یہ بھی اس حوالے سے نقصان دہ ہوتا ہے. تو صبح اٹھتے ہیں تو چھینکے اور نزلہ بھرا ہوا ہوتا ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے. آپ کوشش کریں کہ آپ بھلے دو پنکھے چلیں لیکن آپ کے چہرے پر اس کے براہ راست ہوا نہ پڑے جب تک آپ کو یہ پرابلم ہے، تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی فائدہ ہوگا. باقی آپ 6 گرام ادرک یہ گھر کے اندر موجود ہوتی ہے اور 3 گرام دار چینی، یہ دو چیزیں ہو گئی ہیں، اور اس کو ایک آدھے گلاس پانی کے اندر اس کو پکا لیں گھر میں، یعنی آدھا اس کا رہ جائے تو پھر اس کو اتار کر اس میں شہد ملا کر پی لیا کریں، تو انشاءاللہ عزوجل یہ بھی آپ کے لیے مفید ہوگا. چند ایک چیزیں میں عرض کرتا ہوں کہ جو کہ لنگس کے لیے، پھیپھڑوں کے لیے آپ کو مضبوطی کا باعث بنے گی، تو انشاءاللہ وہ اس حوالے سے بھی آپ کو یہ نزلہ، زکام، دماغ کے حوالے سے فائدہ، یہ مضبوطی ہوگی تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. اس میں آپ انجیر کا استعمال کریں، انشاءاللہ عزوجل یہ بھی آپ کے لیے مفید رہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ منقع استعمال کریں، جو بڑی کشمش ہوتی ہے اس کو استعمال کریں، تو یہ بھی انشاءاللہ عزوجل اس حوالے سے مفید ہوتا ہے. اور اس کا بیج نکال دیں. یہ بیج جو ہے بعض اوقات بعضوں کو جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتا صحیح معنوں میں، تو منقع کا بیج نکال کر اس کو استعمال کر لیں،
یہ بھی بہت اچھا علاج بتایا. انجیر سے مجھے یاد آیا ایک رسالہ، بہت پہلے آپ کو یاد ہوگا میرے سنت کے ملفوظات کے تعلق سے شائع ہوا تھا، اتنے انجیر کے فوائد تھے، یعنی کہ میں پرسنلی انجیر کو مجھے مرغوب بھی ہے، پسند بھی ہے اور مطلب یوں کھاتا بھی ہوں، لیکن یہ کہ یہ اس کے فوائد بہت ہیں، بہت فائدے ہیں، یعنی کہ خون کے تعلق سے، امراض کے تعلق سے، بہت سارے، یعنی اتنے اس کے فوائد ہیں انجیر کے. وہ تین
قرآن کریم میں جس کا ذکر ہو وہ شے کتنی عظیم اور کتنی اعلیٰ ہوگی.
اللہ
اب غور کریں. اور زیتون, خود زیتون کتنا عمدہ نعمت ہے اگر میسر آ جائے. باہر تو زیتون بہت کھایا جاتا ہے, عرب دنیا میں بہت کھایا جاتا ہے. یہ ان کے یہاں یو کے وغیرہ میں بھی زیتون کا, زیتون کی اصل افزائش شاید وہاں ہے یورپ کی طرف ہے, اسپین وغیرہ میں. تو زیتون کا تیل, زیتون خود جو ہے کھانے کا, مگر ہمارے یہاں زیادہ تر زیتون مہنگا ہے اصل میں. لوگ ایک عادت بھی نہیں ہے ہمارے یہاں دسترخوان پر زیتون عموماً نظر بھی نہیں آتے, ورنہ ایسا نہیں کہ اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگوں کا یہاں بھی
نہیں
زیتون نظر نہیں آتا, مزاج نہیں ہے. زیتون ہے, انجیر ہے, یہ آپ نے مطلب جو چند ایک ڈرائی فروٹ کے جو آپ نے نام لیے, بعض چیزیں مطلب اوور لمٹ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے افورڈ کر سکتے ہیں تو تھوڑا بہت یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, اسے صحت کے تعلق سے کہ عبادت و قوت پانے کے لیے اور اللہ کی رضا والی زندگی گزارنے کے لیے اس کو کھانے کی نیت کریں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اور فوائد بھی حاصل ہوں گے. تو یہ چیزیں مطلب ہیں, مرغوب بھی ہیں, مطلب آپ کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے.
زیتون تو ویسے تھوڑا سہلا سا ہوتا ہے,
اچھا
کڑوا کڑواٹا
نہیں, کوئی نہیں ہوتا. اصل میں کئی طرح کے زیتون ہیں,
اچھا
کئی طرح کے زیتون, زیتون کی اتنی اقسام ہیں. اور پھر اس کے پیکنگ کی طرف جاتے ہیں تو پھر مہنگا بہت پڑتا ہے. یعنی میں جب اسپین میں گیا ہوں, یہ یورپ کے کئی ممالک میں گیا ہوں تو وہاں کافی زیتون دیکھے. یہ آپ جو بڑے سپر اسٹور ٹائپ کے جو ہوتے ہیں دنیا بھر, وہاں جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ زیتون کو مطلب کتنی قسم کے زیتون ہیں, انجیر کتنی قسم کے. یعنی میں نے کبھی زندگی میں ایسا انجیر دیکھا ہی نہیں تھا. یہ جو چیکو ہوتا ہے نا, چیکو ٹائپ کے انجیر, یہ انجیر ہوتا ویسے یہی ہے,
اسی طرح ہوتا ہے,
انجیر ہے یہی. یہ پھر یہ سوکھ ہمارے یہاں جو ہے نا
جی,
وہ سوکھے ہوئے انجیر
رسیوں میں
ڈال کر پھر اس کو وہ دیتے ہیں. وہ انجیر جو ہے نا, وہ جو بالکل جو پھل ہے فریش انجیر, باہر اس کے کیرٹ ملتے ہیں, جیسے انڈے کے کیرٹ ہوتے ہیں نا, ایسے اس کے کیرٹ ملتے ہیں اور لوگ اس کے کیرٹ لے کے جاتے ہیں اور کھاتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ مہنگی, ہر ایک اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. باہر کی مطلب کہ آمدنی اس کے مطابق پھر وہاں کی چیزیں ہوتی ہیں, یہاں آنا امپورٹ ہونا اور یہ چیزیں ہونا, پھر خالص ہونا, ملاوٹیں نہ ہونا. یا تربوز میں ملاوٹ ڈال دیتے ہیں, حالانکہ تربوز کتنا بند ہے اور اوپر سے اتنا سخت ہوتا ہے, اس کو لال کر دیتے تو انجیر کا کیا حال کریں گے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور بددیانتی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, بددیانتوں سے بھی اللہ محفوظ.
آمین. اسی طرح کی چیزیں جو انجیر کا آپ نے فرمایا تو اس کے فائدے تو اتنے ہیں کہ اگر ہم پورا سلسلہ اس پہ رکھیں تو شاید.
نہیں بالکل, آپ نے انجیر کا نام لیا نا تو مجھے امیل سنت کی وہ ساری عبارتیں یاد آ گئی. میرا خیال ہے کوئی انجیر کے فائدے تھے اور اتنی بیماریوں سے اس میں نجات تھی. وہاں سے انجیر سے جیسے نہیں ایک الفت سی ہو گئی تھی. یار یہ واقعی یار اتنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے.
مرحبا,
اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بنا